क्यों? शुभ प्रातः मित्रों, ये एक अच्छी प्रातः है और यहाँ होने के लिए एक अच्छा समय है। मैं प्रसन्न हूँ कि मैं इस प्रातः जीवित हूँ और फिर से भक्त मंडली के साथ हूँ। इस छोटे से समय में बहुत सारी बातें घटित हो सकती हैं और हम नहीं जानते कि किस समय हमें उत्तर देने के लिए उस बड़े न्यायालय में बुलाया जाएगा, और हम किसी भी समय के लिए तैयार हैं ताकि हमें शांति मिल सके। और जैसा कि मैंने कहा, मैं बहुत आभारी हूँ। निसंदेह मैं यहाँ रविवार रात्रि में था और लोगों से बातें कर रहा था। मैंने रविवार रात्रि प्रचार किया और भाई रॉबर्टसन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप सब जो रविवार रात्रि बुलाए गए कि संदेश के विषय में आनंद करें। हमारे पास सारी चीजें हैं, और इसलिए कभी कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं बोलने जा रहा हूँ। केवल आकर भाई नेविल की ओर देखने लगा, उनका गला एक प्रकार से भर रहा था, और मैंने सोचा, बेचारे भाई, यदि वो मुझे आज रात बुलाएगा तो मैं उसकी सहायता करूँगा या सब कुछ जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब आप थक जाते हैं तो वो थकना और गले का खराब होना क्या होता है। और आपने उस प्रातः परिश्रम से प्रचार किया था, और इस प्रकार से मैं उस रविवार रात्रि उनके बदले में बोला, और इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब यहाँ बहुत सारे निवेदन हैं, वे प्रार्थना के लिए हैं, और इसलिए हम पहले उन्हें स्मरण करेंगे, ये सारे निवेदन। अब हम अपने अपने सिरों को झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, ये लिखा हुआ है कि हम तेरी सभा में अपने हृदयों पर धन्यवाद करते हुए प्रवेश करें। संतों की सभा में हमारे निवेदन आप तक पहुँचे, और इस प्रातः हमारे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे जो कि हम नहीं जानते कि हम आपका ध्यान उधर की ओर कैसे आकर्षित करें, परंतु आप जानते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो कि बताए नहीं गए, आप उन्हें भी जानते हैं। इसलिए हम अपने पूरे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि जैसे कि हमने पिछले रविवार बहन शेपर्ड के भाई शेपर्ड के बालक के लिए प्रार्थना की थी, वहाँ जबकि उसमें वापस आएगा, पवित्र आत्मा ने कहा उसको कोई पोलियो नहीं है, वो चंगी हो जाएगी। हमारे पास क्या ही संतोष होता है जब हम आपसे सुनते हैं। अब हम इस प्रातः मांग रहे हैं कि आप इन निवेदनों को, जो बीमारी के लिए हैं, जो शोक संतप्त घरों पर हैं, उन प्रियजनों के लिए और सब जिनके लिए कहा गया, प्रदान करेंगे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप प्रत्येक को स्मरण रखेंगे, और मैं प्रार्थना करता हूँ और इन लोगों की प्रार्थना तेरे सन्मुख एकत्र करता हूँ, और यीशु मसीह के नाम में भेजता हूँ। पिता, हमारी सुन ले, हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं आप में से प्रत्येक को अपनी प्रार्थनाओं के लिए, जो आप लोगों ने मेरे लिए की, धन्यवाद देता हूँ। जबकि मैं, आप जानते हैं, वहाँ नीचे चरागाह में मेरे साथ एक विस्फोट हो गया और शैतान ने मुझे मारने का यत्न किया, और निसंदेह वो ये नहीं कर सकता था। परमेश्वर अभी मुझसे अलग नहीं था, क्यों? वो इसे नहीं कर सकता जब तक ये सब पूरा ना हो जाए। जब परमेश्वर का कार्य पूरा हो जाए तो मैं तैयार हूँ, परंतु मैं, मेरे अच्छे मित्र भाई वुड वहाँ, ये बस परमेश्वर का अनुग्रह था, या वो यहाँ नीचे से पाएगा, ना कि यहाँ ऊपर से। वो लगभग 5 या 6 टन का विस्फोट था जो मेरे मुख के पास हुआ। इस प्रकार से मुझे जरा भी कुछ नहीं हुआ, समझे? मेरे चेहरे पर थोड़ी सी खरोंच आई, परंतु अब वो भी नहीं है, बस एक थोड़ा सा निशान रह गया है। इसलिए मैं भाई और बहन डाउच का, जो यहाँ पर हैं, धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाई ब्राउन और वे, जिनसे मैंने टेलीफोन पर बातचीत के द्वारा समझाया कि वे एक झुंड बनाकर एकत्र हुए और मेरे लिए प्रार्थना की, और मैं जो कि कुछ आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। आप जानते हैं कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, और जब सब कुछ, और तब जब आप पाते हैं कि कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, जब आपको आवश्यकता है, तो इसका कुल मिलाकर कुछ अर्थ होता है। और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सोने टेलीफोन नहीं किया या कुछ भी, परंतु आपने भी वही किया, और इसका कुल मिलाकर हमारे लिए बहुत कुछ अर्थ होता है। और यही कारण है कि मैं, इससे मुझे कोई हानि नहीं हुई, परमेश्वर ने मुझे भला चंगा रखा है, और इसलिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। अब इसके पहले कि हम इन छोटे बालकों का समर्पण करें, मेरे पास कुछ उद्घोषणाएं हैं। अब आज रात्रि आराधनालय में सभा है, और आप सब जो यहाँ आराधनालय में आते हैं, सीधे यहाँ सभा में आए, और इसलिए हम लोग, मैं आज रात्रि भाई रुडेल के लिए बोल रहा हूँ। इस राजमार्ग पर हमारा एक मिलने वाले भाई है, और तब जैसे ही मैं वापस आऊँगा, यदि मेरे पास कोई दूसरी रात्रि होगी, तो मैं भाई जूनी जैक्सन के पास जाना चाहूँगा, और तब मैं, वो भाई सेल्सबर्ग में, उसकी वहाँ एक रात्रि हम पर उधार है, और इसलिए हम उससे मिलना जाना चाहते हैं। भाई जो यूटिका में है, इन रात्रियों में आ रहे हैं, जैसे कि हम आ सकते हैं। इस सप्ताह में ग्रीबे विस्कॉन्सन को जा रहा हूँ, जैसे कि आप जानते हैं, फुल गॉस्पल बिजनेसमैन की क्षेत्रीय बेदारी सभा में। अगले रविवार मैं हाई स्कूल में हूँ, जो कि मैं वहाँ पर जहाँ पिछली बार मैं अंतिम बार था, मैं उस हाई स्कूल सभागार का नाम भूल गया। ये क्या है?
मायदर,
स्टीफन मायदर। हाँ ठीक है, हाई स्कूल सभागार। और तब सोमवार को मैं वहाँ जहाँ शिकागो के सेवक गण की संस्था में जहाँ मैंने विचार विनिमय किया था वहाँ पिछली बार, हम वहाँ उस स्थान में भाई जोसेफ बोस की विदाई समारोह में थे, जो कि तंगनई को जा रहे थे। मैं विश्वास करता हूँ कि वे इसे तंगनई का कहते हैं, और केनिया और डर्बन और वहाँ से होते हुए मेरे आने वाली जाड़े की सभाओं का प्रबंध कर रहे हैं, और अफ्रीका में और दक्षिणी अफ्रीका होते हुए। और तब हम आपसे विनती करते हैं, हमें इन सभाओं में अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। तब हम वापस आते हैं। अब मैं नहीं जानता कि मेरे पास आराधनालय में आने के लिए समय होगा या नहीं, इसके पहले कि हम उत्तरी कैरोलिना जाएं, और तब वहां से दक्षिणी कैरोलिना, और तब काउ पैलेस से होते हुए और लॉस एंजलिस में साउथ गेट, और वहीं जहां मैं आशा करता हूं कि जाऊंगा और श्री वेल्डर भाई से मिलूंगा, वहीं जिन्होंने बंदूक बनाई जिसमें खांचा फट गया, उसमें पीछे झटका मारने के लिए टोपी की ओर अधिक स्थान नहीं था कि खोखे को पीछे जाने दे बजाय आगे बढ़ने के। ये पुरानी बंदूक दी, मैंने उसे अभी भेजी थी, और तब उसने उसमें छेद किया और उसे भिन्न प्रकार की बंदूक बना दिया, और मैंने उसमें गोली डाली और दागने के लिए ऊपर उठाया, और वो और इसने बंदूक को मेरे चारों ओर 50 गज तक छितरा कर उड़ा दिया, और मेरे हाथ में पिघल गई, और नली सीधी 50 गज दूर चली गई, और खटका हिरन के पीछे पिंजड़े के पीछे चला गया, मेरे पीछे 30-40 गज और कृची के टुकड़े उड़ गए, और पेड़ की छाल को तोड़ दिया, और बहुत कुछ। इसलिए ये मेरी आंख के बहुत ही पास था, लगभग 1 इंच, जहाँ से इस प्रकार से हुआ, और यदि मैं उड़ जाता वो बंदूक 6900 पाउंड दाब को बिना धमाके से झेलेगी। इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं ये होने के लिए उस पर कितना था। और आप स्मरण रखें, यदि वो फट जाएगी तो वो मेरे सिर और कंधे को भी उड़ा देगी, आप समझे। परंतु वहाँ प्रभु खड़ा था, इसने मुझे जख्मी भी नहीं होने दिया, केवल मेरे चेहरे पर घिसट लगी, एक छोटी सी क्रिच मेरी आंखों के नीचे की ओर चली गई, आंख के चारों ओर गोल बना दिया, इसलिए जहाँ ये क्रिच गई मेरी आंख को नहीं छुआ। कुछ बड़े बड़े टुकड़े मेरे सिर में लग गए, आंख के पास से निकल गए, आंख में नहीं गए। इसलिए ओ प्रभु, आपको याद होगा, अधिक समय नहीं हुआ मैंने आपको बताया था कि वो मुझे कमरे में मिला और कहा, मत डरना, क्योंकि कभी भी न असफल होने वाली यीशु मसीह की उपस्थिति सदा तुम्हारे साथ है। इस प्रकार ये यही सिद्ध करता है कि वो है। एक डॉक्टर जिसने लुविल में मेरी आंख को देखा, उसने कहा, उन्होंने डॉक्टर सैम अदेर को के यहाँ पर लिखा, हमारे मित्र, और कहा कि मैं केवल एक बात कह सकता हूँ कि प्रभु वहाँ पर बैठा था कि अपने दास को बचा ले, या फिर उसका सिर और कंधा भी नहीं बचता। इसलिए वो वास्तव में मेरे लिए भला था, और मैं इसकी सराहना करता हूँ। ये मुझे थोड़ा और समीप ले आता है, ये सदा एक थोड़ी सी भिन्नता रखता है। और 2 दिनों के बाद, 3 दिन के बाद, मैं अपनी सभा में जाने के पश्चात, जहाँ कि मेरी योजना कनाडा जाने की थी, एक व्यक्ति बिना इसको कुछ भी जाने इसके विषय में मुझे बुलाया और सभा को आगे टालना था, समझे। मैं वहाँ सड़क पर था, यदि ये चीजें ऐसी घटित न हुई होती, समझे। और इस प्रकार तब वापस बुलाया, और मुझे कनाडा वालों की सभाएं, और ये जुलाई में होंगी, जुलाई के अंतिम सप्ताहों में, तब मैं डॉसन ग्रीक जा रहा हूँ, तब मैं एंकोर्ज अलास्का, यदि प्रभु ने चाहा। अब इनमें से किसी भी सभा में मुझे एक में भी जाने की प्रेरणा नहीं होगी, परंतु मैं सारी गर्मी यहाँ बैठे रहने की नहीं सोच सकता, यहाँ आसपास बैठा रहूँ और लोग हर जगह मर रहे हैं, मुझे ये कहीं भी वो बीज बोना है, इससे कोई मतलब नहीं कि क्या है, यदि ये नहीं उगता, यदि चिड़ियाँ इसे चुग लेती हैं, यदि ये जो भी है, मैं बीज बोना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे बोने के लिए कुछ दिया है, इसलिए जो भी है मैं बीज बोने जा रहा हूँ। अब यहाँ हमारे पास समय है, अब बहुत से लोग वे क्या कहते हैं, बपतिस्मा, छोटे बालक मसीही विश्वास में, ठीक है, यदि आप ये करते हैं ये आप पर निर्भर करता है, वे वास्तव में उनका बपतिस्मा नहीं करते, वे बस उनके ऊपर पानी छिड़कते हैं, परंतु मेरे लिए, मैं तो जो बाइबल ने कहा है उसके साथ स्थिर रहना चाहता हूँ, इसलिए जो भी वचन ने कहा है मैं केवल वो ही करना चाहता हूँ, जो कुछ भी कहा है। और अब मैं बाइबल में किसी भी जगह नहीं पाता, पुराने नियम में वे अपने बालकों को शारीरिक खतने के लिए लाते थे, वे छोटे लड़के, और माँ शुद्ध होने का चढ़ावा चढ़ाती थी, 2 पंडुकियाँ या 1 भेड़, परंतु नए नियम के अंदर मैं केवल एक ही स्थान में पा सकता हूँ इस महान सभा के स्मरण उत्सव मनाने, ये समर्पण था। वे यीशु के पास बालकों को लाए और उसने उन्हें अपनी गोदी में उठाया और उन्हें आशीषित किया। यही अभिभावकों ने उसके दिन में किया और उसका जीवन हमारे लिए आदर्श है कि हमें क्या करना चाहिए। समझे, ये बातें उसने उदाहरण के लिए की। अब हम इन छोटे छोटे बालकों को लेते हैं और वे उन्हें हमारे पास लाते हैं और हम उन्हें केवल परमेश्वर के पास ले जाते हैं और उनके लिए परमेश्वर से आशीष मांगते हैं और एक समर्पण की प्रार्थना माता पिता की ओर से परमेश्वर से करते हैं जैसे ही वे अपने बालकों को उपस्थित करते हैं और उन्हें यीशु मसीह के नाम में समर्पित करते हैं जब तक कि वे इतने बड़े ना हो जाएं कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें। और अब उसने कहा, हम वचन और काम में जो भी करें यीशु मसीह के नाम में करें। इसलिए यही जो हमें करने की इच्छा करते हैं। और अब जबकि बहन इसे छोटे गाने को धीमे धीमे बजाएंगी, यह हमारे पास है, उन्हें अंदर लाओ। और माताएं और पिता जिनके पास छोटे बालक जिन्हें कभी भी प्रभु को समर्पित नहीं किया गया, यदि आप उन्हें अब यहाँ लाएंगे, जबकि भक्त मंडली हम उनके लिए अब कोमल आवाज में गाएंगे। उन्हें भीतर लाओ, छोटे बालकों को यीशु पास। मैं इन छोटे बालकों से प्रेम करता हूँ, उनमें कुछ हैं जो बहुत ही सुंदर हैं।
Little eyes just looking around me so little. How old? 1 month old. That's our age.
ओ, मैं इन बालकों से प्रेम करता हूँ, इनमें से प्रत्येक से। इनमें से प्रत्येक बालक संसार में सबसे सुंदर है, इसकी आवश्यकता नहीं है। जब मैं छोटे जोसेफ को घर लाया, ये ईमानदारी से, मैंने इतना भोंडा बालक कभी नहीं देखा था, परंतु उसकी माँ और मैंने सोचा कि ये वो गुड्डा है, परंतु ये इसी प्रकार है, आप जानते हैं, यही हमने बस यही सोचा। मुझे आश्चर्य है कि आज प्रातः हमारे कुछ सदस्य यहाँ हैं, वहाँ एक था, अब इस आँख में औषधि है जिसने इसे कभी दूषित कर रखा है, परंतु बहन नाशा ने भाई नाशा के विषय में पूछा, मुझे अचरज है यदि वो ठीक हो गए हैं, क्या वो यहाँ है? ओ अच्छा, वो यहाँ है, भाई नाश, प्रभु की महिमा हो, ये अच्छा है। अब बहन एडवर्ड्स यहाँ पर हैं, क्या वो यहाँ पर हैं? या बहन शेफर्ड्स जिनके पास छोटी बीमार लड़की थी, वो अब ठीक है? बहुत अच्छा, मुझे समाचार मिला जब तक कि मेरे पास बाहर नगर से लोग साक्षात्कार के लिए आते हैं, मेरे पास तब तक मिनट थे, मैंने कमरे में दौड़कर प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि बालक को पोलियो हो रहा है, बाहें और पैर अकड़ रहे थे, और मैं प्रार्थना करने के लिए भागा और कहा मैं चर्च के बाद आऊंगा, बता दें। लॉयस से कहा वापस फोन करके महिला को बता दो कि मैं वहाँ चर्च के बाद आऊंगा यदि वे मुझे बुलाना चाहती हैं। और जब मैं प्रार्थना के लिए गया, आत्मा ने कहा कोई पोलियो नहीं, वो ठीक हो जाएगी। मैं नीचे आया, अच्छा, हम सब ने आराधनालय में प्रार्थना की, ये बस तय हो गया था। हाँ माता जी, प्रभु की महिमा हो। प्रार्थना चीजों को बदलती है, कहती है इस प्रातः वो यहाँ नहीं है, क्या वो दमाद है? पिछली बार मैंने यहाँ प्रचार किया, रविवार एक सप्ताह, वहाँ एक युवा लड़का बैठा हुआ था, मैं उसे लगातार देख रहा था, मैंने सोचा मुझे उस व्यक्ति को जानना चाहिए, और मालूम पड़ा कि वो मेरे पुराने स्कूल के साथी का लड़का था, जिमपुर। क्यों हम अपने छोटे लड़कों के समान एक साथ बड़े हुए, यही वो है जिसके साथ बंदूक से दुर्घटना हुई थी, और तब बाद में एक अपने आप और मेरा एक मित्र। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं इस लड़के की मसीह तक अगुवाई कर सकता हूँ, और मैंने इसके पिता के लिए बहुत परिश्रम किया। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं अब भी उसे अंदर ले आऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि मैं उस युवा की अगुवाई कर सकता हूँ। उसके पास मैंने उसे चारों ओर ढूंढा, वो ऐसा दिखाई पड़ा जैसे कि उसके पास से एक बहुत ही अच्छी आत्मा का कंपन है, एक अच्छा अनुभव। मैं इसे क्या कहता हूँ, मैं ये टिप्पणी हरेक पर नहीं करता, परंतु मैं विश्वास करता हूँ इस लड़के को मसीह के पास ले जाने के लिए अधिक कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आइए उसके लिए प्रार्थना करें, ये ठीक बात है। और भाई आइए देखें, कोई जो बीमार था या कुछ जो मैं सोचने का यत्न कर रहा हूँ, जैसे भी हो हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। और जब कभी आप निवेदन भेजते हैं, इसमें रखें, जैसे ही मैं प्राप्त करता हूँ, मेरी पत्नी यही कहीं भवन में है, मैं सोचता हूँ, इसलिए वो जानती है, जैसे ही मुझे ये निवेदन मिलता है मैं सीधे अपने गुफा वाले कमरे में प्रार्थना करने के लिए जाता हूँ, और वहाँ तब तक टिका रहता हूँ जब तक अनुभव नहीं होता, मैं यूँ ही छोड़ नहीं देता। उस दिन जब डॉक्टर सैम अधेर ने मेरी आंख में से वो निकाला, वो यत्न कर रहा था, और इसने उसे बुरी तरह से आघात पहुंचाया कि उसने मेरे मुंह पर तौलिया डाल दिया, बोला मैं अपने प्रिय मित्र का लहू नहीं देख सकता, और कहा, और मैं उसमें नहा गया। आप जानते हैं उसने कहा मैं इसे नहीं कर सकता, और इस पर कार्य समझे, और उसने इसे बाहर निकाल दिया, और अगले दिन वो अस्पताल में था, इसलिए मैंने उसके लिए प्रार्थना की और वो बाहर ठीक प्रकार से आ गया। और तब दूसरे दिन उसकी पत्नी, वे नहीं जान सके कि उसके पत्नी के साथ क्या गड़बड़ थी, सोचा कि उसे पोलियो हो रहा है, समझे, और उसके लिए प्रार्थना की और वो घर पर अच्छी है। इसलिए हम कमरे में जाते हैं, हम दफ्तर में गए और हमने एक साथ दरवाजा खींचा। कहा, भाई बिल, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। कहा, क्या आप मेरे और बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे? इसलिए वही प्रभु है जो दर्शन दिखाता है कि कहाँ पर चिकित्सालय बनाना है। आपको वो कहानी स्मरण है? यदि आपको कभी कोई संदेह हो तो जाकर उनसे पूछ लें। हाँ, बस कहा, केवल किसी को अंदर आने दें। कहा, मैंने ये 10,000 लोगों को बताया है। भाई ब्रहणम, हाँ भाई, उनके लिए जो आज प्रातः यहाँ पर हैं और दूसरों के हृदयों में अधिक विश्वास उपजाने के लिए, रविवार प्रातः ईस्टर पर आपने उस मूल्यवान प्राण को पुकारा, तीसरा वाला जो कि पुरुष था। आपने कहा कि वो सिमोर से है था, और आपने पवित्र आत्मा के अभिषेक में ये कहा, वे तुम्हें बिली कहते हैं। मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, मैं उसे अच्छी प्रकार से जानता हूँ, और हमारे यहाँ से चले जाने के पश्चात उसका आइजिक है, वे बिल कहकर पुकारते हैं। जी हाँ श्रीमान, देखिए उसका सही नाम आइजिक है, परंतु वे उसे बिल कहते हैं। पवित्र आत्मा गलती नहीं करता, ये असमर्थ होने वाला नहीं। अब ये कोई बात कर रहा था, कहा मैं 53 का हूँ और तीसरा लगभग 31 वर्षों से मैं प्रचार मंच के पीछे हूँ, और मैंने उसे 10,000 चीजों में देखा। बीते कल मैं नीचे दक्षिणी केंटकी में था, ठीक टेनेसी बॉर्डर पर, और मैं भाई डाल्टन के साथ नाव में बैठा था जिसको प्रभु ने उसके सारे बालक दिए हैं। आपको स्मरण है वो प्रातः यहाँ जब उन्होंने आरंभ किया, और उसने कहा, भाई ब्रणम, कहा कि आपके लिए अनुमान लगाना कठिन होगा। मैंने कहा, ओ भाई डाल्टन, दसियों हजारों समयों में से 10,000 बार इस प्रकार की चीजें होती हैं। कहा कि क्या पुस्तक लिखने का यत्न नहीं करते? मैंने कहा, इस पर, मैंने कहा, ओ भाई डाल्टन, मैं इस नाव से पार जाऊंगा, एक विश्वकोश पुस्तकों के संस्करण के संस्करण जो मेरे प्रभु को करते देखा है, और वो एक बार भी कभी भी असफल नहीं हुआ, समझे, एक बार भी, परंतु हर बार सिद्ध। मैं देखता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ, यदि मैं गलती ना करूँ, भाई शेफर्ड की लड़की जो कि नारंगी से दिखने वाले कपड़ों में है, मैं सोचता हूँ कि वो है। उस प्रातः मैं उसके पास रुका, वहाँ नीचे जा रही थी, और मैंने सोचा कि मैंने गलती से ले लिया, इसलिए मैंने छोड़ दिया, इसलिए वो मैं था जिसने बहन को रोका। मैंने सोचा ये भाई शेफर्ड की लड़की है और मैं इसे कार में साथ ले लूंगा, क्योंकि मैंने सोचा हो सकता है उनकी कार टूट गई हो या कुछ। हम बेकी को लेने जा रहे थे और मैंने सोचा ये गलत लड़की हो सकती है, परंतु अब मैं देखता हूँ कि वो वहाँ उनके साथ बैठी है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि वो सही लड़की थी, इसलिए वो मैं था जिसने उसे वहाँ बैठाया और उतार दिया। क्या हर कोई प्रभु यीशु से प्रेम करता है? ओ आश्चर्यजनक, ये बहुत अच्छा और शानदार है, आमीन। अच्छा भाई विलार्ड, आपको यहाँ पाकर हम आनंदित हैं, और आप अच्छे सुंदर भी दिखाई पड़ते हैं, सबसे अच्छा मैं देख सकता हूँ। हम दोनों एक प्रकार से चेहरे से गोल रोटी के समान हो गए हैं, और मैं ऐसा दिखाई पड़ता हूँ कि मैं इसकी मुट्ठी भर से मारा गया हूँ। और उस रात्रि मैंने भाई विलार्ड को देखा जब वे सो रहे थे, सच में ईमानदारी से वो भयानक दिखाई पड़े, परंतु आज प्रातः आप बहुत अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, और हम परमेश्वर का इसके लिए धन्यवाद और महिमा करते हैं, आमीन। आप जानते हैं शैतान हमें मार नहीं सकता जब तक परमेश्वर ना कहे। अब आइए, हम ये जानना चाहते हैं, क्या नहीं भाई विलार्ड, ये ठीक बात है। तब तक ये व्यर्थ ही यत्न कर रहे हैं, बस प्रभु यीशु हमारी सहायता है और हमारे छिपने का स्थान। अब मैं यहाँ बातें कर रहा हूँ जबकि मेरे पास इस प्रातः प्रचार करने के लिए लगभग 6 घंटे हैं। देख, अब हमने कभी इसकी सूचना नहीं दी, कोई भी टिकट नहीं भेजा, और बातें, क्योंकि मैंने पहले ही उद्घोषणा कर दी कि मैं यहाँ नहीं होऊंगा, परंतु केवल आकर और भाई नेवल की सहायता की और आप सब लोगों से फिर से मिलने आया और थोड़ा समय संगति के लिए निकाला। और पिछले रविवार रात्रि भाई रॉय रॉबर्टसन, मैं नहीं जानता कि वे यहाँ हैं कि नहीं, मैं उन्हें अधिक ढूंढ नहीं सका कि यदि वे यहाँ पर हैं या नहीं। उन्होंने मुझे फोन किया और मुझे संदेश के विषय में बता रहे थे, और किसी ने बुलाया और कहा, मुझे आश्चर्य हो रहा था जब आपने परमेश्वर के विषय में बात की और हमें सारी चीजें दी, समझे, उसने किया, वो हमें जीवन देता है, इसे खरीदने का यत्न करें। उसने हमें प्रेम दिया है, इसे खरीदने का यत्न करें। उसने हमें आनंद दिया है, इसे खरीदने का यत्न करें। हमें शांति दी है, इसे खरीदने का यत्न करें। इसे खरीदने की कोई विधि नहीं है, समझे, नहीं खरीद सकते। तब मैंने कहा, उसने हमें मृत्यु दी है। किसी ने पुकारा और कहा, प्रचारक, मुझे आश्चर्य हुआ कि आप इसके साथ कहाँ जा रहे हैं। कहा, मैंने सोचा, ओ यहाँ भाई ब्रणम ने स्वयं को उस समय बांध लिया। न कि जब बाइबल ऐसा कहती है, समझे। बाइबल ने कहा उसने हमें मृत्यु दी। अच्छा, तो हम मृत्यु से क्या कर सकते हैं? आप जानते हैं कि पौलुस मृत्यु के लिए आ रहा था। उसने कहा, ओ मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु हम पर नियंत्रण नहीं रखती, हम उस पर नियंत्रण रखते हैं। ये ठीक बात है, हमें सारी चीजें दी गई हैं। और तब मैंने एक उदाहरण दिया कि कैसे इज़राइल जब प्रतिज्ञा के देश के लिए बढ़ रहा था, उन्होंने वो देश कभी नहीं देखा था। वे उसके विषय में कुछ नहीं जानते थे। उनके पास केवल परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि वहाँ एक देश और वो दूध और शहद से और चीजों से भरा पड़ा है और एक बड़ा स्थान है, और वो उन्होंने इसे कभी नहीं देखा था। उनमें से कोई भी वहाँ कभी नहीं था या उसके विषय में कुछ जानता हो, परंतु उनके पास इसकी प्रतिज्ञा थी। और वे विश्वास से, वे लोग रेगिस्तान के प्रवास में थे, और जब वे ठीक किनारे की रेखा पर पहुँचे, उनके पास एक यहोशू नाम का योद्धा था, जिसका अर्थ यहोवा बचाने वाला है। इसलिए उसने यर्दन पार करके प्रतिज्ञा के देश में गया और प्रमाण वापस लाया कि देश वहाँ था। मुझे ये अच्छा लगता है। और ये अच्छा देश था। दो व्यक्तियों ने एक अंगूरों का गुच्छा उठाया, ये एक अच्छा देश था। इसलिए वहाँ से प्रमाण लाया कि जिस देश पर वे अधिकार करने जा रहे थे वो वहाँ पर था। अब कलीसिया को हम अमरता के देश की ओर यात्रा कर रहे हैं, एक देश जहाँ मृत्यु नहीं है, एक देश जहाँ मृतक जी उठे। और हमारे शिविर में एक महान बचाने वाला यीशु था, जिसका अर्थ यहोवा बचाने वाला, प्रेमी। और उसने मृत्यु की यर्दन के पार उस दूसरे देश में पार किया और प्रमाण वापस लाया कि हम मृत्यु के पश्चात जीते हैं। आमीन। इसलिए मृत्यु कहाँ पर है? और तब उसने हमें सब चीजें दी। अब हमारे पास हमारे वारिसाना अधिकार का बयाना है। इससे बढ़कर, अब ध्यान से सुने, मैं इस पर प्रचार करना चाहता हूँ, परंतु मैं केवल, अब मुझे अच्छी अनुभूति हो रही है, समझे, कि हमारे पास उसका बयाना है। क्योंकि एक दिन हम पाप में चले और उसके नाम में बपतिस्मा पाने के पश्चात और उसके साथ पुनरुत्थान में उठाए गए, हम पाप से बाहर लाए गए, अब बिल्कुल फिर वापस नहीं जाना चाहते। हम पाप में से उस प्रमाण के साथ जिलाए गए कि हमारे पास सारी मृत्यु से जी उठने की अंतः शक्ति है, समझे। यदि हम विश्वास से पाप में से जी उठे, उसमें होकर जी उठे, और वहाँ पाप है जो वापस उस पाप के कूड़ेदान में फिर से वापस जाना चाहे। देखिए, हम मृत्यु से पार होकर जीवन में आ गए, समझे, और यही बयाना है। आमीन। यही पूरे पुनरुत्थान का बयाना है। सारी मृत्यु, शारीरिक और आत्मिक, हम आत्मिक मृत्यु पर जयवंत हो गए क्योंकि हम मृत्यु से जीवन में आ गए हैं। और जैसे कि एक दिन एलिया यर्दन पर आया और उस पर मारा एलिशा के साथ, और वो दो भाग हो गई और पार कर गया, वो दूने भाग के साथ वापस आया। और जब हम मसीह के साथ यर्दन पर मारते हैं, हमारे पास एक भाग है, परंतु जब हम वापस आते हैं, हम दूने भाग के साथ वापस आते हैं, हमारे पास अनंत जीवन है। अब पवित्र आत्मा के साथ धार्मिकता में पाप से पुनरुत्थान हुआ, और तब मसीह के वापस आने पर हम दोनों शारीरिक और आत्मिक पुनरुत्थान के साथ वापस आते हैं। हमारे पास इसका दूना भाग है, हमेशा मसीह और कलीसिया का प्रतीक है, एलिशा और एलिया। ओ, मैं इस पर आरंभ नहीं होना चाहता। ओ, हम कभी भी इस पर 6 घंटे के संदेश पर नहीं आते हैं। हाँ, हड्डी पर मांस नहीं, भाई नेविल, अब ये भी अभिषिक्त है। ओ, क्या आप आनंदित हैं? समझे, हमारे पास नहीं है, वहाँ अब कोई भाई नहीं है, मृत्यु कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास है, ये हमारी है, ये मुझ पर नियंत्रण नहीं कर सकती, मैं इस पर नियंत्रण करता हूँ। कैसे? उसके द्वारा जिसने मुझे जयवंत किया, क्योंकि मैं मृत्यु पर पहले ही जयवंत हो गया हूँ। मैंने ये कैसे किया? उस पर विश्वास करने के द्वारा, समझे। मृत्यु पाप में है, अविश्वास। मैं अविश्वासी नहीं हूँ, मैं एक विश्वासी हूँ, मैं उस चीज से जीवित हो गया हूँ। ये मेरे समस्त शारीरिक और आत्मिक का बयाना है, हर चीज है। जी हाँ श्रीमान, आप समझे। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा मृत्यु हमारे नियंत्रण में है, जो मृत्यु पर जयवंत हुआ। नरक, कब्र, बीमारी, दुख, हर चीज पर वो जयवंत हुआ, और अब हम उसके संग जी उठे हैं। उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। मसीह यीशु में आत्मिक रीति से बोल रहा हूँ, उन सब चीजों के साथ जो हमारे पैरों के तले हैं, यहाँ तक कि शारीरिक पुनरुत्थान भी हमारे कदमों तले है, क्योंकि हम मसीह में हैं। क्या आप समझे? यदि हम अपने हाथों को उठाएं, आमीन, ये अच्छा है। जब तक तुम इसे पाते हो, बहुत अच्छा है, समझे? अब केवल इसे अपने मस्तिष्क में रखे रहिए, समझे? हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके, शारीरिक, आत्मिक, हर प्रकार से और सब चीजों में, और अब सारी चीजें हमारी हैं। जबकि संसार यहाँ ये कह रहा है कि हम पागल हैं, और तब भी सारी पृथ्वी हमारी है। आप कैसे इसके बारे में सुने जा रहे हैं? अब जैसे कि मैंने कहा, अब्राहम, समझे, वो प्रतिज्ञा के देश में था, परमेश्वर ने वो उसे दिया। लूत को कुछ आवारा लोग ले गए, उसे ले गए, वो उसका भतीजा था, ठीक है। हर चीज जो उस देश में थी वो अब्राहम की थी। इस प्रकार से वो योद्धा नहीं था, उसने कभी युद्ध नहीं किया, उसके पास कोई योद्धा नहीं था, उसके पास कुछ दास थे। परंतु जब उसने देखा कि कुछ कि शैतान ने आकर उसे लूट लिया, कुछ जिसकी उससे प्रतिज्ञा थी, उसने अपने दासों को हथियार दिए और स्वयं एक हथियार लिया। वो नहीं जानता था कि वो राजाओं के झुंड से किस प्रकार जीतेगा, बस थोड़े से दास, परंतु परमेश्वर ने उसे बताया कि इसे कैसे करना है, और उन्होंने स्वयं बढ़कर राजाओं को स्वयं मारा और जीत कर वापस आया। क्यों? उसने अपना विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर रखा कि हर चीज जो उस देश में है उसकी थी, और लूत उसका भाग था। ये ठीक बात है, उस देश का भाग था। ओ प्रभु, और यहाँ वो मलकीसेदक से मिलता है, और जब युद्ध समाप्त हो गया था, क्या आप नहीं देख सकते कि अब्राहम मार्ग पर वापस चला आता था? वो नहीं जान पाया कि वो योद्धा है, तब उसने जाना कि वो था। जी हाँ श्रीमान, और वो उससे मिला जिसने प्रतिज्ञा की थी, मलकीसेदक।
Let's read out of the book of Amos. I'm going to speak this morning, not 6 hours.
अब हम आमोस की पुस्तक से पढ़ें। इस प्रातः मैं बोलने जा रहा हूँ, यद्यपि 6 घंटे नहीं, मैं आशा नहीं करता, समझे, उस विषय पर, सच्चे भविष्यद्वक्ता का मार्ग। और आज रात्रि प्रभु ने चाहा तो मैं लेटिंग ऑफ द प्रेशर पर बोलने जा रहा हूँ, और इस प्रकार से प्रभु ने चाहा। अब मैं आलोचक कहकर जाना जाता हूँ, परंतु मैं नहीं चाहूँगा कि मैं आलोचक नहीं हूँ, केवल कुछ भी जो गलत है, समझे, परंतु मैं, हमें गलती की आलोचना करनी चाहिए। अब यदि आप लोग अपने टेप रिकॉर्डर कमरे में आरंभ करना चाहते हैं, क्यों, ठीक है, मैं आमोस के 3 अध्याय से पढ़ना चाहता हूँ। जी हाँ, आमोस का 3 अध्याय, आमोस 3 का थोड़ा सा भाग। हे इसराइलियों, ये वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में, अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है जिसे मैं मिस्र देश से लाया हूँ। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्मों का दंड दूंगा। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो ले तो क्या वो एक संग चल सकेंगे? क्या सिंह बिना अहेर पाए वन में गर्जेंगे? क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मांद में से गुर्राएगा? क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर से उचकेगा? क्या किसी नगर में नरसिंगा फूकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। सिंह गर्जा, कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी ना करेगा?
His eyes must have got narrow.
As he stood that morning, उसकी आंखें मिची सी हो जानी चाहिए, जैसे कि वो उस प्रातः उस सामरिया के बाहर उस पहाड़ पर खड़ा हुआ है। मैं देख सकता हूँ जैसे कि उसका स्थिर हाथ उसकी सफेद दाढ़ी में से होता हुआ चला, गर्म सूर्य के नीचे की ओर चमक रहा है। वो उसकी ओर देखने के लिए अधिक मोहित न था। आज के आधुनिक सुसमाचार सुनाने वालों से कितना भिन्न था। उसके कपड़े ऊंचे नीचे थे, झबरी सी दिखने वाली दाढ़ी, और उस सामरिया शहर की ओर देखा। जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखें दबी दबी सी होने लगी। वो देखने के लिए ललित नहीं था, परंतु उसके पास यहोवा यूं कहता है था उस राष्ट्र के लिए। संभवतः ये आने वाले अभियान से बहुत ही भिन्न है कि प्रभु ने उसे सामरिया के लिए भेजा। तो फिर हमारे आधुनिक सुसमाचार सुनाने वाले क्या होते? वो ऐसी बेदारी के लिए लैस नहीं था जैसे कि हम आज सोचते हैं उसे होना चाहिए। परंतु स्मरण रहे, वो आधुनिक सुसमाचार सुनाने वाला नहीं था, वो एक भविष्यवक्ता था। उसे आधुनिक उपकरण की आवश्यकता नहीं थी, उसके पास यहोवा यूं कहता है था। उसे चिंता नहीं थी कि वो कैसा दिखाई पड़ रहा था और वो कितने फैशन के वस्त्र पहने हुए था, उसके बाल ठीक बने हुए थे या नहीं, चाहे उसकी ओर कोई देखे या न देखे। उसके पास प्रभु का वचन था और यही उसका संपूर्ण उद्देश्य था, प्रभु का वचन लेकर आए। ये व्यक्ति कौन था? जी हाँ, ये आमोस भविष्यवक्ता था। कठोर व्यक्ति, परंतु वो अपनी स्थिति को जानता था। वो जानता था कि वो क्या कर रहा था। वो वचन का सच्चा भविष्यवक्ता था। और इस नगर में उसके आने का कारण ये था कि उसके पास प्रभु का वचन आया था। और जब प्रभु का वचन सच्चे दास के पास आता है तो उसे जाना चाहिए, चाहे जो भी हालात हो या कोई परेशानी, जो भी हो उसे जाना चाहिए। चाहे वो तैयार हो, चाहे वो ऐसा अनुभव करता हो, चाहे वो चाहता हो, चाहे वो जो कुछ भी हो, उसे जाना ही चाहिए। ये परमेश्वर बोल रहा है, उसे अपना संदेश ले जाना चाहिए, क्योंकि ये वो कभी मूर्खता के लिए नहीं जाता, वो पैसे के लिए नहीं जाता, वो ख्याति के लिए नहीं जाता, वो केवल प्रभु के नाम में जाता है, केवल एक चीज के लिए। उसका एक उद्देश्य है और वो प्रभु का भेजा हुआ है। और वो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन लिए हुए है। ये प्रभु का सच्चा भविष्यवक्ता है। मेरा विषय परमेश्वर के सच्चे भक्त का मार्ग है। ये निर्भय परमेश्वर का जन, इसने यरोबाम दूसरे के दिनों में भविष्यवाणी की थी। मेरे पास उसके इतिहास का भाग है, यहाँ मेरे पास लिखा रखा है। उसने अपने अभियान में 13 वर्ष भविष्यवाणी की थी। और यरोबाम था, यरोबाम दो, वैसा ही एक तेज और योग्य मनुष्य था जैसे कि कुछ समय इज़राइल के पास थे। ये वो मनुष्य था जो इज़राइल में खुशहाली लाया था। इज़राइल फल फूल रहा था, परंतु उसमें कुछ गड़बड़ थी। वो मूर्ति पूजक था। और मैं इसे उस दिन पढ़ रहा था, मैं एक प्रकार से सोच रहा था कि ये आज के लिए बिल्कुल सही बैठता है। इससे कोई मतलब नहीं कि मनुष्य कितना तेज है और वो कितना कर सकता है, और कितना समृद्ध है। यदि वो परमेश्वर से हट गया है तो वो राष्ट्र के लिए कर्ज का भुगतान है, परमेश्वर और उसके वचन से हटकर। मुझे आश्चर्य है यदि ये आज हम पर सही नहीं बैठता, उसके लिए जो टेलीविजन पर बैठकर और दर्शाता है कि वो कितना तेज है और उनके पास कितनी बुद्धि है। परंतु मुझे आश्चर्य है यदि उसके पास लेने के लिए यहोवा यूं कहता है बहुत है। वो एक तेज बुद्धि वाला मनुष्य था, ठीक है। इज़राइल आत्मिक रीति से पिछड़ी अवस्था में था, उसके प्रचारक, उसके याजक और उसकी सरकार ने भी प्रभु का वचन छोड़ दिया था। अब वे इस पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने यही विश्वास किया कि वे प्रभु के वचन के साथ थे। परंतु एक मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में वे मार्ग मृत्यु के होते हैं। वे क्यों गलत थे? या मनुष्य क्या विश्वास कर सकता था कि वे गलत थे? मनुष्य का सारा याजकवाद, हजारों प्रचारक और याजक और राजा लोग और हाकिम, वे सब जो स्वयं को परमेश्वर का उपासक कहते थे, और तब भी वे सब गलत थे। तब उन्हें समृद्धि के लिए राजा की आवश्यकता नहीं थी। वो जो उनकी आवश्यकता थी वो एक भविष्यद्वक्ता था, क्योंकि प्रभु का वचन या प्रभु के वचन का अनुवाद सच्चे भविष्यद्वक्ता के पास आता है। कभी कभी आप देख सकते हैं कि उस समय उसका क्या मार्ग था। ये एक सुंदर कठिन मार्ग है। जब सारे याजक लोग और सारे प्रचारक और सारे धर्म विज्ञानी लोग और सरकार स्वयं उसके विरुद्ध है, परंतु फिर भी प्रभु का वचन भविष्यद्वक्ता के पास आता है, और केवल उसी के पास। उसके पास सही वचन था, यद्यपि जो वही बाइबल जो उनके पास थी उसके पास थी, परंतु वचन उसके लिए था। परमेश्वर प्रमाणित कर रहा था कि उसके पास वचन है। उनके पास महान भवन थे और धार्मिक तंत्र और आदि आदि जो कि उनके पास कभी नहीं थे। हर जगह वेदियां बनाई गईं और सब प्रकार की बातें, परंतु फिर भी वे परमेश्वर के वचन से लाखों मील दूर थे। मैं स्वयं सोचता हूं कि ये चित्र आज के दिन सही बैठता है, जैसे कि मैं इस आमोस की पुस्तक को पढ़ता हूं। जब आप घर जाएं तो आपको इसे पढ़ना चाहिए। सारी सरकार, याजक लोग, वे सारे परमेश्वर का वचन छोड़ चुके थे। मैं यहाँ वचन का दूसरा भाग पढ़ना चाहता हूँ और मुझे दर्शाना है कि उन्होंने ये कहाँ किया। अब आइए दूसरा अध्याय पढ़ें और चौथा पद, एक मिनट में। यहोवा यूं कहता है, यहूदा के तीन या वरन चार अपराधों के कारण मैं उसका दंड नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना। ये वचन है, उसे त्याग दिया और तो भी उन्होंने सोचा कि उनके पास था, और मेरी विधियों को नहीं माना, और उनका झूठ उनकी गलती का कारण। अब उनके पास वचन बाइबल थी, परंतु झूठ जिसमें वे सम्मिलित हो गए थे उनकी गलती का कारण ठहरा था, जिनके पीछे उनके पुरखा चलते थे। कारण देखिए, अब वे गलती में थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपना अनुवाद या व्याख्या वचन की कर ली। और मैंने सोचा कि ये आज सही बैठ रहा है, जैसे कि बहुत सारे वचन में अपने विचार डालना चाहते हैं और हम गड़बड़ी में पड़ जाते हैं। परमेश्वर की ओर से क्या ही झिड़की इस भविष्यद्वक्ता के पास थी। अब आमोस परमेश्वर का सच्चा भविष्यद्वक्ता था, एक सच्चा भविष्यद्वक्ता। किसी ने भी कभी आमोस के विषय में पढ़ा हो तो वो जानेगा कि आमोस परमेश्वर के जन की निर्भीकता को जानता था। इसको छोटे भविष्यद्वक्ताओं में से एक गिना गया, क्योंकि वो अधिक समय तक नहीं रह सका, परंतु निश्चय ही उसने कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रख दिया। वो निर्भय भविष्यवक्ताओं में से एक था और वो अभिषेक के साथ आया। वो यहोवा यूं कहता है के साथ आया। वो जानता था कि वो किस विषय में बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उस पर था, ताकि परमेश्वर के वचन का सही अनुवाद उनके पास लाए। आमोस जंगल के देश से आलिशान नगर में आया। वो वहाँ पहले कभी नहीं आया था। वो देहाती लड़का था, वो दूर जंगल से। जब वो वहाँ पीछे प्रार्थना में था, परमेश्वर उससे मिला और उस देश की दुष्टता और शाम को बताया जिसमें कि वो उसका भाग था, और सामरिया राजधानी थी, यरोबाम के समय की एक राजधानी में से एक। और जब वो वहाँ उस प्रातः पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ और अपने पुराने अशिष्ट गांव के वस्त्रों को पहने हुए चला आ रहा था, संभवतः धूल और कीचड़ उसके पांव पर थी, जिनमें कि वो अपने पुराने मजबूत कपड़ों को पहनकर कई रातों सोया हो, और मैं नहीं जानता कि उसके समय में नहाने का टब नहीं था, उसे नहाए हुए कुछ दिन बीत गए होंगे, परंतु इससे अंदर के मनुष्य को कोई हानि नहीं होती। आज बाहर की ओर बहुत कुछ डाला जाता है, अंदर की ओर पर्याप्त नहीं है। हमने प्रतिदिन स्नान किया, हम इसको अधिक महत्व देते हैं, और हमारे बाल बने हुए, बदले हुए कपड़े और सब कुछ, अंदर चाहे कुछ भी होने दें। वही पाप से भरे पुराने वस्त्र, प्राण धर्मसार और रीतियों से सड़े हुए, और कभी नहीं देखा और अलगाव के पानी से कभी नहीं धोया संसार की वस्तुओं से। जैसा कि उस प्रातः वो पहाड़ पर खड़ा हुआ वैभव भरे नगर को देख रहा है, आधुनिक चीजों से भरा हुआ, जिनको कि उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था कि ऐसी चीजें हैं। इसराइल अपनी ऊंचाई पर था, वो अपने आसपास के देशों के साथ मैत्री संबंध में था। बहुत वैभवशाली महिलाएं आकर्षित वस्त्र और पुरुष, और वे भोग विलास से चिपके हुए दौड़ दौड़ रहे थे, और ओलंपिक और सब चीजें चल रही थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी आंखें मिची हुई सी, नगर के वैभव से नहीं, जैसे कि कुछ पर्यटक करेंगे न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस आते हुए। आधे कपड़े पहने हुई स्त्रियों को देख रहे हैं जिन्हें पुरुष ले जा रहे हैं, और वो पाप। कुछ दिनों पहले मेरे कुछ मित्र मछली के शिकार से वापस आ रहे थे, उस बाइबल कॉलेज के नीचे की ओर से, वो प्रसिद्ध बाइबल कॉलेज, और वहाँ सड़क के किनारे लंबी घास में युवा लड़कियाँ, अधनंगी और युवा लड़के पड़े हुए थे, संभवतः कॉलेज के विद्यार्थी, पी रहे थे और भयानक स्थिति में। अब ऐसे ही चलता रहता है, जैसे कि बहुत सारे अमरीकनों की अपनी अभिलाषा को गुदगुदाते हैं, और जो अपने को मसीह कहलाते हैं, जब वे लॉस एंजलिस में देखते हैं, या मैंने उन्हें समतल में नहीं देखा, जब हम लॉस एंजलिस में आए, वे पहले वहाँ नहीं होंगे, या हॉलीवुड में या फ्लोरिडा में, अपने उन रंग बिरंगी बत्तियाँ उन पाम के पेड़ों पर थीं। ओ, उन्होंने अपनी नाक पर पाउडर लगाया और सिंगार किया। उन्होंने सोचा ये बहुत ही सुंदर चीज है जो उन्होंने कभी देखी है, और देखिए अच्छी प्रकार से बाल बने और कपड़े पहने सड़कों पर चल रहे हैं। वे बाहर निकल जाना चाहती हैं कि देखें कि कितने कसे हुए कपड़े वे पहन सकते हैं, या सड़कों पर मटकते घूमना, जब वे सोचते हैं ये कुछ बहुत सुंदर है। परंतु उस अभिषेक भविष्यवक्ता की आंखें वैभवता के कारण नहीं चुनी आई, जैसे कि कुछ पर्यटकों की, परंतु लोगों के नैतिक पतन के कारण, जो कि परमेश्वर के आशीषित कहलाए थे। उसकी आंखों ने मोहकता को नहीं देखा, वे मोहकता के कारण नहीं चुनी आई, ये क्योंकि भद्दापन और लोगों की भ्रष्टता जो कि परमेश्वर के चुने हुए कहलाते थे और इस प्रकार का आचरण व्यवहार में ला रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं, उसने कहा सिंह गर्जा, कौन न डरेगा। परमेश्वर बोला और कौन भविष्यवाणी न करेगा। उसने भ्रष्टाचार और गिरावट को देखा, वो इसी चीज को देख रहा था। यही जब उसने ये सब देखा, वो आकर्षित नहीं हुआ, वो अपने अंदर प्राण में दुखी हो गया। क्यों? वो एक भविष्यवक्ता था। वो जानता था कि परमेश्वर ने आशीष देने के लिए क्या प्रतिज्ञा की है और आशीष क्या थी और लोग आशीष के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और उसके दिनों में शैतान ने वास्तविक आशीष को दूषित कर दिया और नैतिक पतन में एक आशीष जो बिना मत परिवर्तन वाले लोगों की आंखों को गुदगुदाती है और अभिलाषा में अच्छी लगती है, परमेश्वर की इच्छा और मार्ग से होते हुए और परमेश्वर के जीवन का मार्ग कैसे आज का प्रतीक है। प्रचारक कैसे मंच में खड़े हो सकते हैं और संसार के पाप और भ्रष्टाचार को देखते हैं और लोगों को करते हुए कि जिस प्रकार से वे व्यवहार कर रहे हैं और तब उन्हें आशीष देते हैं क्योंकि वे उनकी कलीसिया के सदस्य हैं या एक नामधारी हैं। मेरी अंतर आत्मा इसे अधिक समझ सकती है। जब परमेश्वर बोलता है भविष्यवाणी होती है। यदि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ता पर प्रहार करता है, वो वचन के साथ चिल्लाएगा। मैं आलोचक नहीं होना चाहता, परंतु कौन शांत रह सकता है? कौन ऐसी चीजें देखने के लिए खड़ा रह सकता है और स्वयं को मसीह का सेवक कहे और उसे ना कहे? मैं चिंता नहीं करता कि नामधारी क्या कहेगा या कोई कलीसिया क्या कहेगी। यही कारण है कि मैं उनसे संबंधित नहीं हूँ। पहली बात, वे आपको लात मारकर बाहर कर देंगे। परंतु पहले परमेश्वर का वचन आता है। यदि आप संदेशवाहक हैं, तो आपके पास कहने के लिए कुछ है और यदि आप इस वचन के विरोध में बोलते हैं, तो आप परमेश्वर की ओर से संदेशवाहक नहीं हैं, तो आप किसी नामधारी के वाचा के दूत हैं या किसी सिद्धांत के। परंतु परमेश्वर के दूत के पास परमेश्वर का वचन होता है और हमारा मित्र इस प्रातः जैसे कि हम उसे देखते हैं, उसके पास परमेश्वर का वचन था क्योंकि वो प्रभु का सच्चा भविष्यवक्ता था। अब उन्होंने सोचा कि उनके पास इसका अनुवाद था और सोचा क्यों, निश्चय ही देखिए हम क्या कर रहे हैं। अब इसकी बात, हमारे पास वो वहाँ पहाड़ की चोटी पर सुबह खड़ा हुआ नीचे नगर में देख रहा है, अपना सिर हिला रहा है और देख रहा है। उसकी आंखें चुंदियाई और अपनी अस्तीन से मुंह का पसीना और धूल पोंछी। गर्म सूर्य उसके गंजे सिर पर चमक रहा है और उसकी दाढ़ी नीचे लटकते हुए उसके हाथों से रगड़ रही है। उसने वैभव को नहीं देखा, उसने पाप देखा जिससे वो प्रसन्न नहीं हुआ। उसे बहुत बुरा लगा। वो क्यों नहीं कहेगा, मैं एक इजरायली, देखो मेरा राष्ट्र कैसा समृद्ध हो रहा है। वो कैसे कह सकेगा तब, जबकि वो परमेश्वर का सच्चा भविष्यवक्ता है, परिणामों को जानता है, इस प्रकार की चीजों का क्या होने जा रहा है। आइए आज हम उसे पहाड़ पर खड़ा होने दें और उसे नीचे देखने दें, उसे नीचे जेफरसन विले में लोगों को देखने दें जो अपने आप को मसीही कहते हैं। उसे अमेरिका में कहीं भी देखने दें, उन लोगों को जो स्वयं को मसीह कहते हैं। उसकी परमेश्वर द्वारा अभिषेक आंखें फिर चुंदिया जाएंगी, उसका हाथ दाढ़ी में घूम जाएगा। क्यों? वो वैभवता और उन्नति नहीं देखता जो संसार देखता है। वो देखता है कि परमेश्वर से कैसे अलग हैं। वो लोगों का चरित्र हनन देखता है, वो राष्ट्र का पिछड़ जाना देखता है, वो कलीसिया की सड़ाहट देखता है। वो कुछ और कैसे कर सकता है सिवाय अपनी आंखों के चुंदियाने को छोड़ और उसमें जाकर ताकि वो इसके टुकड़े टुकड़े कर दे। क्या हो यदि बिशप उससे वहाँ पहाड़ पर मिले और कहे, अब आप प्रभु के भविष्यवक्ता हैं, अब हम आपको बताएंगे कि आप क्या कह सकते हैं और क्या नहीं कह सकते। आप सोचते हैं कि वो सुनेगा? क्या हो यदि वो कहे अब आकर हमारी संस्था में सम्मिलित हो जाओ और आपके अभियान में हम आपकी सहायता करेंगे, आप सोचते हैं क्या वो सुनेगा? नहीं, मैं कल्पना नहीं कर सकूंगा कि इस प्रकार के मनुष्य से। नहीं, वो परमेश्वर का भेजा हुआ था, उसे उनका सहयोग नहीं लेना था। उसके पास परमेश्वर का वचन था और परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का नियुक्त समय, और यहोवा यूं कहता है, मैं आ रहा था। और ये सच्चा भविष्यद्वक्ता है, वो इसी प्रकार यात्रा करता है, वो सिवाय यहोवा यूं कहता है को छोड़ यात्रा नहीं करता। क्या ये शानदार नगर सामरिया, ये तथाकथित उच्च शिक्षित इजरायली, ये शानदार प्रचारक और पादरी लोग इस छोटे अपरिचित व्यक्ति का स्वागत करते? संभवतः उसकी व्याकरण बहुत खराब थी, जंगल से किसी निर्धन परिवार से आया था, घर छोड़ परमेश्वर का बुलाया हुआ, परमेश्वर और उसके वचन का अध्ययन करने के लिए जंगल में चला गया और भविष्यद्वक्ता हो गया। प्रभु ने उसे उसी प्रकार जन्माया। भविष्यद्वक्ता उस युग के लिए संदेश वाहक होते हैं, जो कि परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान से उस युग को जाना और उसका प्रतिनिधि वहाँ पाप के लिए बोल रहा है। क्या वो वैभव भरा नगर उसे स्वीकार कर सकता है? आप सोचते हैं कि वे स्त्रियाँ जो उसने कहा उसकी ओर ध्यान देंगी? आप सोचते हैं कि वे पादरी उसकी सुनेंगे? क्यों नहीं श्रीमान। उसके पास किसी संस्था से कोई स्वीकृति पत्र नहीं था। वो ये नहीं कह सकता था कि फरीसियों ने मुझे भेजा है, ना ही ये कह सकता था कि सदूकियों ने उसे भेजा है। वो कोई प्रत्यंक नहीं रखता, उसके पास कोई संगति पत्र नहीं है किसी भी झुंड के लोगों से। उसके अभियान को तय करने के लिए कोई भी हरकारा नहीं था। वहाँ सारे फरीसियों की एकता की सभा नहीं थी और सेवक गणों का नाश्ता और सब एक साथ मिल करके उसके अभियान को तय करते, और ये जानते हुए कि वो आ रहा था, वो उनके लिए अपरिचित था। उसके पास कोई संगति पत्र नहीं था, उसके पास प्रत्यंक नहीं था, उसके पास मनुष्य से कोई स्वीकृति पत्र नहीं था, परंतु उसके पास यहोवा यूं कहता है। सच्चे भविष्यद्वक्ता का यही मार्ग है, उसके पास यहोवा यूं कहता है था। यदि उसके पास यहोवा यूं कहता है था, तो ये हम मनुष्यों द्वारा बनाई गई योजना से भिन्न था, यही उसकी आवश्यकता थी। यदि वो इस मार्ग से आता तो वो कलीसिया के नाम से आता, यदि इस मार्ग से आता है तो वो प्रभु के नाम से आता है। इसलिए सच्चा भविष्यद्वक्ता सदा प्रभु के नाम के मार्ग से आता है, वो सदा प्रभु के नाम से आता है। अब वो संगति के पत्र को नहीं दिखा सकता, परंतु उसके पास परमेश्वर का वचन था, और यही जो परमेश्वर ने लोगों के पास भेजा है। अब लोगों ने स्वयं को संस्थाओं के रूप में ढाल लिया है, उनके पास विभिन्न संप्रदाय झुंड हैं, और लोगों ने यही बनाया है। परंतु आमोस के पास ये नहीं था, उसके पास केवल यहोवा यूं कहता है था, यही जो उसके पास था। मैं एक प्रातः के उन याजकों की कल्पना करूंगा जो छोटी सी उस सबत की प्रातः एक छोटी सी प्रार्थना की और आदि आदि, और महान मूसा पर थोड़ी सी बातें करी कि एक दिन रहा था और वो कोई महान जो किसी दिन था, परंतु वो दिन अब बीत गए। अब आप लोग हमारे नए अध्यक्ष को जानते हैं, हमारी नई सरकार और हमारे वो सब जो हमारे पास है, और इस प्रकार से कुछ चीजों पर बातें की और घर चले गए। परंतु यहाँ एक मनुष्य आता है जो इसकी चिंता नहीं करता है, वो यहोवा यूं कहता है के साथ आता है। समझे, भविष्यद्वक्ता का यही मार्ग है, कोई सहयोग नहीं। जानता है कि उसके सामने क्या है, जानता था कि हर चीज उसके विरोध में होगी, जानता था कि वे उसे अस्वीकार कर देंगे, वे उसे भगा देंगे, परंतु वो प्रभु के नाम में आता है। यीशु जानता था कि कलवरी उसके सामने है, परंतु वो प्रभु के नाम में आता है। समझे, सच्चे भविष्यद्वक्ता का यही मार्ग है। उसके पास राष्ट्र के लिए परमेश्वर का वचन था, परंतु परमेश्वर का सच्चा वचन उनके लिए बाहरी बात थी। तो भी उन्होंने सोचा कि ये उनके पास था। मैं आशा करता हूँ कि ये गहराई में बैठ गया। उन्होंने सोचा कि वे इतने भक्त और धार्मिक हैं कि परमेश्वर का वास्तविक वचन उनके लिए बाहरी है। और आज इस प्रकार से है, परमेश्वर का सच्चा प्रकट वचन बहुत से पेंतिकोस्तल लोगों के लिए बाहरी चीज है। वचन का वास्तविक अनुवाद, वास्तविक शोक और श्राप, परमेश्वर की वास्तविक आशीषें बहुत से लोगों के लिए बाहरी चीज हैं, जो स्वयं को होलीनेस कहलाते हैं, कलीसिया के सदस्य मसीही, ये उनके लिए बाहरी चीज है, वे इसे नहीं जानते। उनसे इसका उल्लेख करें, कभी भी ऐसी बात नहीं सुनी, और तब भी उनकी संस्थाएं बढ़ और फूल फल रही हैं, और बड़ी होती जा रही हैं, और सारे समय सदस्य और प्रतिवर्ष और संस्थाएं बढ़ती जाती हैं। उन्होंने सोचा कि कोई भी चीज जो उनके पास आती है उसे उस संप्रदाय के झुंड से ही आना चाहिए। निश्चय ही वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे और न ही वे आज इसे करेंगे। वे इस बात को बहुत पहले भूल गए कि परमेश्वर योग्य है कि इन पत्थरों से परमेश्वर के लिए सच्चा भविष्यद्वक्ता उठाए। परमेश्वर लकड़हारे से करवाने के योग्य है। वो योग्य है कि इन पत्थरों से मनुष्य को उत्पन्न कर दे, जो कि उसके वचन और भविष्यवाणी को उसके नाम से सच्चाई के लिए खड़ा होगा। कुल्हाड़े को पेड़ की जड़ पर लगाएगा और लकड़ी के टुकड़े गिरने देगा। मैं चिंता नहीं करता चाहे आपको सहयोग मिले या ना मिले, परंतु सच्चे भविष्यद्वक्ता का यही मार्ग है। कुछ लोग सोचते हैं वो इसे सरलता से पाता है। वे नहीं जानते कि वे क्या बोलते हैं। वो नगर में किसी गाड़ी द्वारा नहीं लाया गया, अच्छे घोड़े से जुती हुई बग्गी खुंदने, और याजक लोग वहाँ अपने सिर पर ऊंची सी चीज रखे हुए उसके सामने झुकते हैं, आदरणीय डॉक्टर अमुक अमुक आ रहे हैं। वो तो किसी संस्था की व्यवस्था होती है। और जैसे सब लोगों के राजा आते हैं, वो उसी प्रकार से आता किसी अस्तबल में से भूसे पर, गाय के भूसे की खत्ती में। कभी भी शान और महिमा में नहीं आया, परंतु वो एक बालक की नम्रता में चरनी में आया। आमोस प्रभु का वचन नहीं लाया, क्योंकि वो प्रभु का वचन था। परमेश्वर का कोई भी वचन वो व्यक्ति नहीं है, वो परमेश्वर है। यीशु ने कहा, ये मैं नहीं हूँ जो कार्य करता है। उन्होंने कहा, तू एक मनुष्य होकर स्वयं को परमेश्वर बनाता है। उसने कहा, तब यदि मैं परमेश्वर का कार्य ना करूं तो मेरा विश्वास मत करो, परंतु यदि कार्य स्वयं बोलते हैं तो कर्मों का विश्वास करो, यदि तुम मेरा विश्वास नहीं करना चाहते। आमोस परमेश्वर का वचन सड़क पर चल रहा था। वो असभ्य सी चाल चला, न कि संसार के चलन की चाल। वो आत्मा की सामर्थ्य में आया। That's the way the word of God comes. Not an organizational creed. इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आता है, संस्था के मतसार में नहीं, न ही प्रचार मंच पर कुछ लीपा पोती के साथ, परंतु ये आत्मा की सामर्थ कि परमेश्वर को राष्ट्र और लोगों पर प्रकट करे। ये भिन्न है, ये कितना भिन्न है। अब ये अनुभव किया गया जो कि बहुत पहले भूल गए थे कि परमेश्वर इस योग्य है कि पत्थरों से सच्चे भविष्यद्वक्ताओं को उत्पन्न कर सकता है। उनके पास नहीं है, उनकी संस्थाओं ने सच्चा भविष्यद्वक्ता नहीं उत्पन्न करना था, क्योंकि वे संभवतः ये नहीं कर सकते थे, क्योंकि यदि ये होता तो ये संस्थागत भविष्यद्वक्ता होते। परंतु परमेश्वर उत्पन्न करता है, परमेश्वर जो चाहे वही लेता है। अधिकांश वो अपना कार्य करने के लिए कुछ नहीं लेता, ये दिखाता है कि वो परमेश्वर है। यदि एक मनुष्य फूल जाए और सोचे कि वो कुछ है, तो परमेश्वर उसे उपयोग में नहीं लेता, क्योंकि उसका अपना वहाँ पर बहुत है। आज मसीही कलीसियाओं के साथ यही बात है, वे सोचते हैं कि वे कुछ जानते हैं। बाइबल कहती है, जब मनुष्य सोचता है कि वो कुछ जानता है, तो उसे जानना चाहिए कि वो कुछ नहीं जानता। आज की परेशानी, हमारे पास बहुत है, बहुत से ढोंग, बहुत शिक्षा, बहुत सा धर्म, और परमेश्वर के उद्धार के वचन के विषय में नहीं जानते। ये इसका दयनीय भाग है। हाँ, वे भूल गए होंगे कि परमेश्वर योग्य है कि अब्राहम के लिए पत्थरों से संतान उत्पन्न करे या वचन का सच्चा भविष्यद्वक्ता उत्पन्न करे। उन्हें किसी विशेष विद्यालय से निकलकर नहीं आना है, परमेश्वर उनको सिखाता है। उन्हें कॉलेज में 4 डिग्रियां नहीं लेनी हैं, उन्हें अपना कला स्नातक नहीं लेना है और अपना डॉक्टर की डिग्री और आदि आदि, उन्हें ये सब नहीं लेना है। परमेश्वर जो चाहे लेता है और उसमें अपना वचन रख देता है। वो इसे कैसे करता है? वो इसे प्रकट करता है और सिद्ध करता है। वे नहीं कह सके कि यीशु कौन से धर्म विद्यालय से आया, वो किसी से भी नहीं। उसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? उसने कहीं से भी नहीं। उसके पास क्या था? उसके पास परमेश्वर और वो वचन था। वे किसी विद्यालय की ओर संकेत नहीं कर सके, और परमेश्वर कभी भी किसी विद्यालय से मनुष्य को नहीं तैयार करता। इतिहास में चले जाएं और ढूंढें कि उसने कभी ऐसा किया। उसने कभी नहीं किया, वो नहीं करता। वो कहीं से कुछ लेता है जिसमें कुछ ना हो, उसकी कोई आशा नहीं, तब उसे लेकर उसमें अपना वचन रखता है और स्वयं को प्रकट करता है। और यहाँ आमोस में वो यही कर रहा है। ठीक है, अब आमोस का वचन उस दिन में परमेश्वर द्वारा प्रमाणित था, उनके अपने दिनों में। परमेश्वर ने आमोस के वचन को, कि उसके पास ये प्रभु का वचन था, प्रमाणित किया। और यदि वो हमारे पास आए इस समय, तो क्या आप सोचते हैं कि हमारा राष्ट्र और हमारे लोग इस प्रकार के मनुष्य को ग्रहण करेंगे? क्या आप सोचते हैं कि बैप्टिस्ट आमोस को ग्रहण करेंगे? मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटेकोस्टल, कैथोलिक? नहीं श्रीमान, नहीं। निश्चय ही वो ग्रहण नहीं किया जाता। आइए एक क्षण को हम उसे ले जाएं और एक मिनट के लिए यहाँ ले आएं और देखें कि वे करेंगे या नहीं। हम थोड़ा सा देखें कि वो करेगा, चाहे हमारी कलीसियाएं उसे आज स्वीकार करेंगी कि नहीं। पहली चीज वो करेगा, वो हर संस्था से असहमत होगा, क्योंकि ये वचन के विरोध में है। जी हाँ श्रीमान, वो हमारी सारी व्यवस्था को दोषी ठहराएगा। ये ठीक बात है। प्रत्येक शिक्षा, प्रत्येक मतसार, प्रत्येक नामधारी, वो सब कुछ को दोषी ठहराएगा। मैं कल्पना करता हूँ, मैं कुछ पेंटिकॉस्टल प्रेस्बिटेरियनों को कहते देख रहा हूँ, क्यों परमेश्वर की महिमा हो, यदि वो क्यों हम उस मनुष्य को अपने नगर में नहीं आने देंगे। और आप क्या सोचते हैं कि प्रेस्बिटेरियन और बैप्टिस्ट करेंगे? क्यों? वो अज्ञानी, हम उसे अपने देश में के आसपास नहीं चाहते। वो कुछ नहीं, बस एक सनकी है। वे कागज पर हस्ताक्षर करेंगे कि उसे जेल में डाल दो, यदि वे उसे सड़कों पर से हटा सकें। परंतु क्या आप सोचते हैं कि आप उसे वहाँ रख सकते हैं? ओ नहीं, आप परमेश्वर के वचन को कैद नहीं कर सकते। नहीं नहीं, जो भी है वो सामने आएगा। एक रात्रि जेल के दरवाजे खुल गए जब उन्होंने इसे बंद करना चाहा, एक ज्योति भीतर आई और उसे छुड़ा लिया। नहीं, वो निश्चय ही हमारे तंत्र से असहमत होगा। ठीक है, वो क्या करना आरंभ करेगा? लताड़ना। क्यों? वो परमेश्वर का दास है। वो सीधा अभियान को आरंभ करने के लिए नेव पर जाएगा, सीधा पीछे, और उनके प्रत्येक मतसार को लताड़ेगा और वापस नेव पर आ जाएगा। नेव क्या है? परमेश्वर के वचन पर। ठीक है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। इसलिए वो प्रत्येक नामधारी को, प्रत्येक मतसार, प्रत्येक शिक्षा को लताड़ेगा जो उसमें है, और एक और फेंक देगा, वो इसे अनंतता में उड़ा देगा। आप सोचते हैं कि पेंटिकॉस्टल उसे स्वीकार करेंगे? नहीं श्रीमान। बैप्टिस्ट प्रेस्बिटेरियन? नहीं श्रीमान। नाजरीन पिलग्रिम होलीनेस? वे उससे घृणा करेंगे, निश्चय ही। आप सोचेंगे कि वे बाहर जाकर उससे मिलेंगे एक बंद मोटर गाड़ी में और उसे नगर में लाएंगे? वे सूर्य से प्रार्थना करेंगे कि उसे वहाँ झुलसा दे। वे एक रोक लगा देंगे कि उसे नगर से बाहर रखें। क्यों? वे सारे नगर में बहुत सारी सभाएं होंगी जो आपने अपने जीवन में कभी ना देखी होगी। उस सनकी को नगर से बाहर रखो। परंतु फिर भी उसके पास यहोवा यूं कहता है था। समझे, सच्चे भविष्यद्वक्ता का यही तरीका है। निश्चय ही वो तिरस्कृत होगा। वो अपने अभियान के लिए सीधा प्रारंभिक बातों पर आएगा। उसे आवश्यकता नहीं होगी, वो ये नहीं कहेगा कि अब मैं चाहता हूँ कि आप सब मेथोडिस्ट आकर मेरी सहायता करें, मैं आप बैप्टिस्टों को चाहता हूँ, मैं यहाँ आसपास के सारे लोगों को चाहता हूँ, आप सारे पेंटिकोस्टल को आप दावा करते हैं कि आप ही अंतिम झुंड हैं जिन्हें परमेश्वर बुलाने जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे पास आए और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अभियान में सहायता करें। आप कैसे बपतिस्मा देते हैं? पवित्र आत्मा के प्रारंभिक प्रमाण क्या हैं? वे प्रश्न वे सब उसके सामने लाएंगे। और जब वो बाइबल के सत्य के साथ आता है, वे उसे अस्वीकार कर देंगे। परंतु सच्चे भविष्यद्वक्ता का यही मार्ग है, उसके पास सामना करने के लिए साहस है, समझे? निश्चय ही वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं श्रीमान, हमारे पास कुछ नहीं होगा, हम उसका कोई अभियान अपने नगर के आसपास नहीं करने देंगे। नहीं, वास्तव में नहीं भाई, हम उसे नहीं लेंगे। नहीं श्रीमान, परंतु वो आएगा और कलीसिया को वापस वचन पर लाएगा, क्योंकि वही नेव है, और कोई दूसरी नेव डाले वो धसने वाली रेत है। केवल इसी नेव पर परमेश्वर अपनी कलीसिया बनाता है, प्रेरितों की शिक्षा पर। जैसा कि मैं उस दिन कह रहा था, वहाँ कुछ लोग बातें कर रहे थे अग्निशोधक के विषय में, और बहुत सो का, जैसे संत फ्रांसिस, संत सिसिलिया का उल्लेख कर रहे थे, और वह निश्चित लोगों के लिए प्रार्थना कर रही है उस अग्निशोधक के लिए, और इस प्रकार के अधिकार देते हैं। ये अधिकार वचन के नहीं है, ये लोग जिनके पास अधिकार नहीं, प्रेरितों के पास वचन के अधिकार हैं, और यदि ये उनके विरोध में है तो ये झूठ है। जहाँ तक मेरा अपना विचार है, मैं शोधक अग्नि में विश्वास करता हूँ, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि ये अब है, आप अपने प्राण को शुद्ध करें। शोधक अग्नि यानी परगेटरी का अर्थ है शुद्ध करना। जब आप देखते हैं कि आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ से निकलकर उसे अपने में से धो लें, स्वीकार करने के द्वारा, और रोने और उपवास और प्रार्थना। कोई मुझ पर भी हंसा जब पहले प्रभु यहाँ आया, अधिक समय पहले नहीं, और मुझे एक दर्शन दिया जो कि सर्प को बांधने के विषय में मैं हमेशा देखना चाहता था। मैं हमेशा आश्चर्य करता था कि कैसे यदि मैं अपना कदम इस प्रकार बाहर निकालूं, जब वो जो कि मैंने सदा अपने जीवन भर चाहा, तब मैंने उपवास और प्रार्थना करना आरम्भ किया। कहा कि तुम ये किसके लिए करोगे? मैंने कहा, उसने कहा कि मैं पर्याप्त सच्चा नहीं था, मुझे अब स्वयं की शुद्धता के लिए आना था। अपने मरने तक प्रतीक्षा न करें और कोई पादरी आपको शुद्ध करे, अपने प्राणों को शुद्ध करो। परंतु ये उन्होंने अधिकृत वचन के बाहर से ले लिया और इसे मनुष्य के द्वारा बनाए गए रिवाजों में डाल दिया, ताकि कलीसिया में पैसा लाएं, क्योंकि वे सांसारिक वस्तुओं की ओर देखते थे। सांसारिक कलीसिया, संसार में महान शक्ति, राजनीतिक शक्तियाँ, परंतु परमेश्वर अपने वचन को देखता है, और कोई भी वचन जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो वो गलत है। जैसा कि जहाँ तक मेरा विचार है, ये वचन है या फिर कुछ नहीं। जी हाँ, जी हाँ, वो सीधा नेव पर जाएगा, वो चीजों को टुकड़े टुकड़े करके रख देगा। उसे करना ही होगा, वो और कुछ नहीं कर सकता। यदि आमोस यहाँ होता, वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि स्मरण रहे, वो परमेश्वर का सच्चा भविष्यद्वक्ता है जिसके पास वचन आता है। वो और कुछ नहीं कर सकता, केवल वचन पर वापस जाता है। कोई मतलब नहीं यदि राष्ट्र के सारे पेंटिकोस्टल आसपास एकत्र हो जाएं, कहें, श्रीमान आमोस, हम आपका भविष्यद्वक्ता होने का विश्वास करते हैं, परंतु आप वचन से अलग हैं, हम आपको सुधारना चाहते हैं। वो वचन के साथ बना रहेगा, और कुछ नहीं है जो वो कर सके, क्योंकि वो एक भविष्यद्वक्ता है। उसे उनके सहयोग की आवश्यकता नहीं। देने के लिए उसके पास एक संदेश है, और सब जो पिता ने मुझे दिया है वो मेरे पास आएगा, और वो वचन प्रचार करने जा रहा है, और वो ठीक उसी प्रकार प्रचार करेगा जैसे कि बाइबल में होगा, और इसलिए हम उसे अस्वीकार कर देंगे। ये ठीक बात है। कोई मतलब नहीं कि क्या होगा, परमेश्वर का वचन भविष्यद्वक्ता के पास आता है। वचन का अनुवाद, सही अनुवाद, इज़राइल सदा लीक से हटा, और परमेश्वर ने उसके पास एक भविष्यद्वक्ता चिन्हों और आश्चर्य कर्मों के साथ भेजा कि उस वचन का अनुवाद करे। उसने कैसे जाना? उसने कहा, यदि ये भविष्यद्वक्ता बोले और वो घटित हो, तब ये ठीक है। उसने अपने भविष्यद्वक्ताओं को प्रमाणित किया कि वे सही थे। यीशु ने कहा, वो जो मुझ पर विश्वास करता है तो जो कार्य मैं करता हूँ वो भी करेगा। ये आप जानेंगे, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। और वे कैसे प्रभु का भविष्यवक्ता होने का दावा कर सकते हैं और उसी परमेश्वर के वचन का इनकार करें? कैसे एक मनुष्य पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम उन उपाधियों में बपतिस्मा ले सकता है, जबकि बाइबल में कोई ऐसा लेख नहीं है कि उनके सिद्धांत को बल प्रदान करे, जबकि यीशु मसीह के नाम का इनकार करे? मैं कठोर और आलोचक हो सकता हूँ, परंतु ये उस मार्ग पर होने का समय है, सत्य है। कैसे लोग आज स्वयं को मसीह होने का दावा कर सकते हैं और सब तरफ भाग रहे हैं और स्त्रियां कटे बालों के साथ और छोटे छोटे कपड़े पहन रही हैं और सिगरेट पी रही हैं और सिनेमा शो के लिए भाग रहे हैं, किसी भी प्रकार का पुराना शो और चल रहा है? मुझे बताइए, ये क्या पवित्र आत्मा है? मुझे ये कभी ना बताएं। आप परमेश्वर का पेट खराब कर देते हैं यदि ऐसा कभी हो सकता था। मैं निश्चित हूं आप समझते हैं। स्वयं को ऐसा कहते हैं, ऐसी बातें या चीजें कैसे हो सकती हैं? उनके फलों से वे जाने जाते हैं। वो हर बाल कटी हुई स्त्री पर चिल्लाएगा और दोषी ठहराएगा। वो कुछ और कैसे कर सकता है? वो भविष्य रखता है और ये वचन है। वो कहेगा, तुम जिजाबेल हो। वो उनको कठोरता से लेगा। क्यों? वो एक भविष्य रखता है, उसे वचन के साथ स्थिर रहना है। ये ठीक बात है। आप सोचते हैं कि वे रुक जाएंगे? नहीं श्रीमान, वे कहेंगे ये हर धर्मी है, ये वैसे ही पुराने पौलुस के समान खराब है जो बाइबल में है, स्त्रियों से घृणा करने वाला। तुम धोखा देने वाले झुंड मसीही कहलाते हो? कोई मतलब नहीं। आप कितने पवित्रता से जीवन बिताने का यत्न करते हैं, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं। जब तक आप परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं और उसके साथ मेल नहीं खाते, आप एक पापी हैं, एक अविश्वासी। वो यही कहेगा। वो इसे रखेगा नहीं, वो कुल्हाड़े को ठीक पेड़ की जड़ पर रखेगा, वो कुछ भी नहीं छोड़ेगा। वो एक भविष्यवक्ता है और सच्चे भविष्यवक्ता का यही मार्ग है। वे उस वचन के साथ स्थिर रहते हैं, चाहे वो कोई हो। यदि ये आपके अपने माता या पिता हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यीशु ने यही किया, यहाँ तक कि वो उसे माँ भी नहीं कहेगा। वो नहीं थी, वो परमेश्वर था। परमेश्वर के पास नहीं है। यदि उसके पास होती तो फिर उसका पिता कौन होता? वो धमाका करेगा और उन्हें दोषी ठहराएगा। वो प्रत्येक नामधारी को दोषी ठहराएगा, क्योंकि उनमें से कोई भी वचन पर नहीं बना है। मैं उनमें से एक को भी नहीं पा सकता। और जैसे ही वे प्रभुता करते हैं, तो उस समय तो वे वचन के विरोध में होते हैं। इसलिए कैसे एक भविष्यवक्ता उन्हें आशीषित कर सकता है जिसे वचन दोषी ठहराए? तब भी वो नहीं करना चाहता कि उसके भाई को आघात लगे, परंतु फिर भी उसे ये करना है, क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता है और वो परमेश्वर के सच्चे वचन का प्रतिनिधि है। और कैसे भी वो उससे अलग नहीं हटता, आज्ञा पर आज्ञा और नियम पर नियम। देखिए, मेरा क्या अर्थ है? सच्चे भविष्यवक्ता का मार्ग। मेरे पास आकर कहते हैं, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भविष्यवक्ता बना दें। वो ये नहीं करता। नहीं, वो ये नहीं करता। वो कलीसियाओं में कभी भी किसी अनैतिक व्यवहार को दोषी ठहराएगा। वे बंकों, दावतें और सारी चीजें जो उनके पास हैं, ताश पार्टी, सूपे पार्टी, वो उन प्रत्येक को दोषी ठहराएगा। वो धमाके से उन्हें नरक में पहुंचा देगा जहां से वे आए हैं। सोचिए, आप उसे ग्रहण करेंगे? नहीं, आज कलीसिया उसे स्वीकार नहीं करेगी। पेंतिकॉस्टल उसे स्वीकार करेंगे जब वो उनके मध्य में जाकर और ये कहता है, तुम बालकटी जिजाबेलों का झुंड, क्या तुम यहोवा यूं कहता है का अर्थ नहीं जानती हो? यहाँ छोटे चिपके वस्त्र पहने आती हो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम लोगों को प्रतिदिन सैकड़ों मनुष्यों के साथ व्यभिचार के दोषी हो? वो यही कहेगा। आप कहेंगे, अच्छा, वो बूढ़ा तकिया नूसी बूढ़ा गंजा सफेद दिखने वाला, उसे प्रचार मंच से हटा दो, हम ट्रस्टी बोर्ड को देखेंगे। डीकन, उसे यहाँ से बाहर कर दो। हम तुम बेचारे ढोंगियों के झुंड। ये ठीक बात है, आमोस इसे पुकारेगा। और तब सेम को कहते हैं, हम इस झुंड से संबंधित हैं, हम उस झुंड से जुड़े हैं। तुम लोग अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि वही है जो वचन का इनकार करता है। कहते हैं हम अन्य भाषाएं बोले और फिर अपने बाल कटाते हो, परमेश्वर की महिमा हो, हैलेलुया। बाइबल ने कहा ये साधारण बात है कि स्त्री इस प्रकार से बाल कटाकर प्रार्थना करे, तब स्वयं को एक मसीही कहते हो, आपके लिए लज्जा की बात है। कहीं कोने में घुटने के बल जाओ और परमेश्वर के साथ ठीक हो जाओ। उन्हें छोटे पुराने कपड़े पहनाते हो और बाहर आगे आ जाते हैं और स्वयं को बाहर दिखाते हैं, जबकि आप भली भांति जानते हैं और आप प्रतिदिन सैकड़ों लोगों के साथ व्यभिचार करते हैं। यीशु ने ऐसा ही कहा है, यदि कोई भी किसी स्त्री पर कुरुदृष्टि डाले तो वो उसके साथ व्यभिचार कर चुका। वो है जिसने स्वयं को प्रस्तुत किया और आपने अपने में किया। चाहे आप संसार की बातों के लिए मर गए, आप इन बातों से ऊपर उठ गए हैं। जैसा कि मैंने आरंभ में कहा, आप लज्जा से अपना सिर घुमा लेते हैं, आपकी आंखें पाप की ऐसी बात पर चुन लिया जाती हैं, बजाय उसे कामुकता से देखें। तुम मनुष्य क्या ऐसा करोगे और स्वयं को मसीह कहोगे? वो आपसे यही कहेगा। आज प्रातः मैं उसके वचन लेने का यत्न कर रहा हूँ। वे उसके वचन होंगे क्योंकि वो स्मरण रखे, वो एक सच्चा भविष्य रखता है, उसे उस वचन के साथ स्थिर रहना है। और मैं केवल उसके शब्दों का उल्लेख कर रहा हूँ, क्योंकि यदि आप उसे बुलाएं, वो वचन है, तब वो स्वयं में वचन है। आप मनुष्य को ना ले सकें, परंतु आपके पास उसका वचन है, क्योंकि उसके पास प्रभु का वचन होगा। हर मनुष्य द्वारा बनाई गई शिक्षा को वो दोषी ठहराएगा, जैसे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा, वो उस चीज को अनंतता में फेंक देगा। वो इसे दोषी ठहराएगा ताकि उसकी गंध भी न बचे। जी हाँ श्रीमान, आप में से कितनी कलीसियाएं आज प्रातः इसे इस आधार पर स्वीकार करेंगी? तब वे ये यीशु नाम का झुंड, वे कहेंगे ओ हम उसे इस आधार पर ले लेंगे, और तब आपकी संस्था, तब उसके साथ ही वो आपके ऊपर चिल्लाएगा, ये ठीक बात है। तुम्हारी बाल कटी स्त्रियां और तुम उसके साथ रह रहे हो, ये ठीक बात है। तुम्हारे पुरुष जिस प्रकार से वे करते हैं और व्यवहार करते हैं, ये ठीक बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं भविष्यद्वक्ता होना अच्छा है, ये है। यदि आप संसार की हर चीज को बेच देने के लिए तैयार हैं और परमेश्वर और उसके वचन के साथ स्थिर रहें। नहीं, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से नहीं। आज हमारे नाम धारी निश्चय ही हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। उसकी सुनिए, धमाका करो। उसने कहा वो परमेश्वर जिस पर तुम विश्वास करने का दावा करते हो, वो तुम्हें नष्ट कर देगा। इस विषय में वो क्या करेगा? वही परमेश्वर जिस पर पेंतिकोस्तल विश्वास करते हैं, उसी अनैतिक व्यवहार पर और वे चीजें जो आप कर रहे हैं और करने की अनुमति दे दी है, वही परमेश्वर उन संस्थाओं पर न्याय लाएगा। ठीक यही आमोस ने उन लोगों से कहा। ओ, उन्होंने कहा हमारे पास अब्राहम है, हमारे पास ये है, हमारे पास व्यवस्था है, हमारे पास पादरी है, हमारे पास भविष्यद्वक्ता है। ओ भाई, वे आंखें जैसे उसने उन्हें देखा चुंदिया गईं और उन पर वचन का धमाका कर दिया। जी हाँ श्रीमान, निश्चय ही वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं श्रीमान, उसने कहा वे तुम्हारी मनुष्य द्वारा बनाई शिक्षाओं से इन्हें नष्ट कर देंगे। वो आपको आज यही बताएगा, वो वही कहेगा जो उसने तब कहा। उसने कहा वही परमेश्वर जिसके लिए तुमने आराधनालय बनाए हैं, संभवतः लाखों डॉलर दिए हैं, वही आराधनालय जो तुम यहोवा के लिए बना रहे हो, जिससे प्रेम करने का तुम दावा करते हो, वही परमेश्वर तुम्हें नष्ट कर देगा, क्योंकि तुम उसके वचन को अस्वीकार कर रहे हो। ऐसा ही आज है। वही परमेश्वर जिसकी सेवा करने का दावा अमेरिकन लोग करते हैं, उनके राष्ट्र पर न्याय लाएगा और इसे नष्ट करेगा। मैं आशा करता हूँ कि बहुत भीतर बैठ गया, आप इससे कभी भी इधर उधर नहीं हिलेंगे। वही जिससे तुम मनुष्य के द्वारा बनाए रीति रिवाजों से प्रेम करने का दावा करते हो और अनैतिक जीवन और उसका आस करते हो जो तुम्हारे में है, परमेश्वर के वचन से दूर आपको किसी दिन नष्ट कर देगा। ये यहोवा यूं कहता है, उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। वचन के साथ हो जाइए, राष्ट्र के बाहर उन्हें सुसमाचार प्रचार कीजिए, उन्हें सत्य बताएं। सेवक गण उपद्रव और चिल्लाना और चल रहा है, मनुष्य दोषी ठहराया गया है, संस्थाओं ने आपको बाहर निकाल दिया है।
महिलाएं अपने सिर हिलाती और बिना वजह अपने बालों को बढ़ने नहीं दे रही हैं और अपने वस्त्र ठीक वैसे ही वर्ष प्रतिवर्ष पहन रही हैं। वे बत्तख की पीठ पर पानी डालने के समान होकर रहे हैं। तब आप ये दावा करते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। उसने कहा, यीशु ने कहा, तुम मनुष्यों की रीति रिवाजों को लेकर परमेश्वर की आज्ञाओं को प्रभाव रहित कर दिया। सच्चे भविष्यद्वक्ता का यही मार्ग है, समझे? ये सरल मार्ग नहीं है। ये वो नहीं है कि प्रत्येक सोचता है कि हो सकता है ऊपर नीचे कूदो और चिल्लाओ और सब आपकी पीठ थपथपा रहे हैं तो फिर ये बस इस बात का चिन्ह है कि आप सच्चे भविष्यद्वक्ता नहीं हैं। चिन्हों में से यही एक चिन्ह है जो आपके पास नहीं है, जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं। जब उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई तो धार लगाने के लिए कुल्हाड़ी तैयार हो गई। क्यों? वो पलट कर उन्हें दोषी ठहराता है। ठीक है, आमोस की पीठ नहीं थपथपा सकते, वे एलिया की पीठ नहीं थपथपा सकते। वो ऐसी बातों के पक्ष में नहीं है। नहीं श्रीमान, उसने उन्हें परमेश्वर का सत्य बताया। और यदि स्वर्ग इतना महान है और जहां हम जा रहे हैं, तब यदि हम छोटी छोटी बातों के साथ स्वयं को ठीक नहीं कर सकते तो फिर वहां आत्मा के साथ कैसे स्वयं को मिला सकते हैं? आपको वचन के अनुसार होना है और यही सच्चे भविष्यद्वक्ता का मार्ग है। यद्यपि ऐसा कहकर वो उनको टुकड़े टुकड़े कर देता है, वो इससे राष्ट्र को टुकड़े टुकड़े कर देगा, ये ठीक बात है, परंतु मार्ग यही है। वो इसका धमाका कर देगा। ओह, आप जानते हैं कि उसने उनसे क्या कहा? हो हल्ला, यदि आप यहाँ पर ध्यान दें, उसने कहा, ये तुम्हारी सरकार में नहीं है, ये आपके अंदर है। यही उसने कहा, का भेष धरने वालों, तुम्हारी कलीसिया में हंगामा है जिसके कारण ये परेशानी है। कारण कि आज साम्यवाद राष्ट्र पर छा रहा है, ये कलीसिया के कारण, ये लोगों के कारण। आज वे स्वयं को मसीह कहते हैं, वे दूतों के समान गाते हैं, प्रशिक्षित आवाजें और बात करने में दक्ष, जैसे कि वे सराप हों, और परमेश्वर के वचन पर अविश्वास जैसे कि शैतान। ये ठीक बात है, शराब के समान गाते हैं, वस्त्र ऐसे धारण करते हैं, मैं नहीं जानता क्यों, अब परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं। एक मनुष्य, एक प्रचारक प्रचार मंच में, वो वहाँ खड़ा होगा और डॉक्टर आदरणीय कहलाएगा और उससे पूछें, क्या बाइबल ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे के लिए कहा है या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के? और वो आपके मुंह पर हंसेगा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा को लेता है। तब अपने आप को परमेश्वर का बालक कहता है। स्त्रियां जानती है कि बाइबल उन्हें कुछ बातों के लिए दोषी ठहराती है, और अपने बाल कटाने के लिए और संसार का सा व्यवहार करने के लिए और अश्लील वस्त्र पहनने के लिए और इस प्रकार की बातें जो भी हो वे इसे निरंतर करती हैं। अन्य भाषाएं बोलती हैं, ऊपर नीचे उछलती और चिल्लाती और बूढ़ी महिलाओं की सोसाइटी और सिलाई के झुंड और मिशनरियों को कार्य क्षेत्र में भेजती हैं। परमेश्वर की दृष्टि में ये घृणित है और यहोवा यूं कहता है कि वो सबको नष्ट कर देगा, वो करेगा। ये सरल बात नहीं है, परंतु सच्चे भविष्यद्वक्ता का यही मार्ग है। वहाँ धमाका कर दो और ये कहो, चाहे ये चोट पहुँचाए या नहीं। यूहन्ना सच्चा भविष्यद्वक्ता था, उसने कहा, कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है। उनका यही तरीका है। निश्चय ही परेशानी उसी में है। दूतों के समान गाते, शैतानों के समान नाचते, नाच चल रहे हैं, ताश खेलना, दौड़ना, पेंटिकॉस्टल मनोरंजन स्थलों में जाते हैं, सिनेमा की भीड़ में वे हैं, हर जगह किसी भी प्रकार का पुराना नाटक या कुछ भी, और स्वयं को मसीही कहते हैं और जाकर चीखते हैं, अन्य भाषाओं में बोलते हैं और पैर धोना और प्रभु भोज लेते हैं। क्यों? ये एक जैसे कुत्ता अपनी उल्टी पर जाता है, भविष्यद्वक्ता ने कहा, वैसे ही वे करते हैं। यदि ये बात संसार की थी और आप में बाहर निकाली जानी थी तो फिर क्यों इस ओर दोबारा फिर गए? ठीक है, बाहर सड़कों पर मटक रहे हैं, वे इसे रोक एंड रोल कहते हैं, बाल कटा रहे हैं, छोटे वस्त्र पहन रहे हैं, ओ स्वयं को मसीही कहते हैं। क्या आप कभी? नहीं, अच्छा हो कि मैं इसे ना कहूँ, इसलिए मैं उन्हें दोषी ठहराता हूँ। यदि मैं इस वचन के साथ स्थिर रहने जा रहा हूँ, यही यदि वचन मेरे पास आता है, इस वचन के साथ स्थिर रहता हूँ, यही जो मेरे पास आता है, वही वचन इसे दोषी ठहराता है। पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई का दावा करते हैं और ऐसी बातें करते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस महिला की अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा होती है वो अपने बाल कटने दे, जबकि वही पवित्र आत्मा इसे दोषी ठहराती है? तो पवित्र आत्मा किस प्रकार का व्यक्ति हुआ? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रचारक प्रचार मंच पर खड़ा हो और कोई भी मनुष्य उसे चुनौती दे कि कहीं भी किसी ने भी कभी भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपाधि का उपयोग करके बपतिस्मा लिया हो, आपके ऊपर हंसता है और आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने के कारण संकी कहता है और कहता है कि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है और कहता है कि उसके पास पवित्र आत्मा है? क्या पवित्र आत्मा अपने वचन का इनकार करेगा? नहीं श्रीमान। क्या आप देखते हैं? मैं आशा करता हूं कि आप इसे समझ गए। अब मैं नहीं जानता कि कितना समय कि अगला विस्फोट मुझे ले ले, परंतु जब तक ये नहीं होता मैं वचन के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। जब मैं आपसे वहां न्याय पर मिलूं, मैं ठीक वचन के साथ खड़ा होने जा रहा हूं। यही जो मैं विश्वास करता हूं कि ये सत्य है। नहीं, आप इस प्रकार की चीजें ना करें और तब पवित्र आत्मा लें। एक बार एक सेवक की पत्नी वहां पोशाक पहने बैठी थी और वो भयानक दिख रही थी। आप कहते हैं आपको कोई अधिकार नहीं, मेरे पास अधिकार है, वो वचन है, सबको प्रचार करना। आप उन बातों को छोड़ देते हैं, बहुत से दोगले प्रचारक, क्योंकि उनके पास नहीं है। संभव है पहली बात कि वे प्रचार के लिए बुलाए नहीं गए, आमीन, परंतु परमेश्वर का सच्चा दास वचन के साथ स्थिर रहता है। ये ठीक बात है। सेवक की पत्नी अपनी वेशभूषा में कसी बैठी है, बुंदे लटक रहे हैं, श्रृंगार कर रखा है, छोटे कटे बाल, जबकि परमेश्वर इस सब को गंदगी के समान दोषी ठहराता है और फिर कहते हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा है। अधिक समय नहीं हुआ मैं फीनिक्स में प्रचार कर रहा था इसी प्रकार की चीज पर, और एक सेवक की पत्नी प्रचार मंच पर लड़कों के समान बाल कटाए बैठी थी और उस पोशाक के साथ कि वो अपने नीचे का स्कर्ट दिखने से नहीं बचा पा रही थी, अपने घुटने पर नहीं ला सक रही थी, वहाँ बैठी थी, ऊपर नीचे उछल कर गीतों में अगुवाई कर रही थी। मैं जितनी जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाया, ठीक है वो मुझे फिर निमंत्रण नहीं देगा, मैं उससे आशा नहीं करता, परंतु वो गलत है और सही जानता है। जब मैं न्याय पर खड़ा होता हूँ तो अब ये मेरी गर्दन पर नहीं है, तब जाकर कहते हैं एक व्यक्ति जो शिक्षक कहलाता है, जो कि मैं नहीं कहता परंतु वो नहीं है, किसी नगर में मेरे मित्रों के समक्ष एक टिप्पणी की, मैं उन्हीं में था, आप भाई को जानते हैं, और इस भाई ने आकर कहा, उन्होंने कहा हमारे यहाँ भाई ब्रैनम एक बार थे एक नगर वहाँ पश्चिम में, और व्यक्ति ने कहा ओ भाई ब्रैनम एक अच्छे व्यक्ति हैं, समझे, वे चरित्र पर कुछ भी खुलकर बोलते हैं। कहा भाई ब्रैनम परंतु आप उनके टेप ना सुनिए क्योंकि वे आपको चकरा देंगे। और ऐसा हुआ कि वहाँ मेरा एक मित्र खड़ा था, बोला एक मिनट श्रीमान, जब तक मैंने टेप नहीं सुने थे मैं उलझन में था, और यही भिन्नता है। कहा मैं नहीं समझ सका कैसे पवित्र परमेश्वर इस प्रकार की चीजें के साथ रहेगा जैसा आप सब लोग करते हैं। वही व्यक्ति दूसरा उसके साथ था, अधिक समय नहीं हुआ किसी स्थान पर खड़ा था, कहा भाई ब्रैनम एक भविष्यद्वक्ता है, वो बातों को परख सकते हैं और इस प्रकार की बातें, परंतु कहा अब उसकी शिक्षा को मत सुनना क्योंकि वो ठीक नहीं है। मूर्ख गवार अभिव्यक्ति जैसा, क्या आप ये नहीं जानते? यदि मैं भविष्यद्वक्ता नहीं हूँ परंतु यदि परमेश्वर का वचन सत्य है और वो भविष्यद्वक्ता के पास आता है, प्रभु का वचन भविष्यद्वक्ता के पास आता है, वे वचन का अनुवाद थे, तब आप देखते हैं। क्या नहीं देखते? ये कोई अनुभूति नहीं, केवल एक नामधारी के पीछे छिपना, इन्हीं दिनों में वो टूट जाएंगे और पिघल कर और नरक में नष्ट हो जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन सदा उत्साहित रहेगा। इस पत्थर पर मैं सदा अपनी आशा रखूंगा प्रभु के वचन पर, और सब बातों को खत्म होने दो। यदि मैं सारे मित्र खो दूं, हर चीज, मेरी मित्रता मसीह में है, मेरी आशाएं किसी और पर नहीं है सिवाय यीशु के वचन पर, धार्मिकता के संग जब चारों ओर से मेरा प्राण मार दे तब वो मेरी सारी आशा और ठहराव है। उस दिन बंदूक फट गई और मैंने देखा, मैंने सोचा कि मैं मर गया, शांति भरी अनुभूति थी, मैंने चारों ओर देखा, मैंने सोचा अच्छा ये है। तो फिर नामधारी मेरे लिए क्या भला करेगा, संस्था मेरे लिए क्या भला करेगी, मुझे वहाँ परमेश्वर के अग्नि में न्याय के सामने वचन से न्याय के लिए खड़ा होना होगा। यद्यपि मुझे झुलसना पड़ सकना हो और झुकना और ऐंठना और बहुत से लोगों को अलग खींचना, परंतु मैं आशा कर रहा हूँ कि बनाऊँ परमेश्वर के उस वास्तविक वचन की मींग को पालूँ और प्राण को अनंतता के लिए तैयार करूँ। ये ठीक बात है। परमेश्वर इसे अपने हाथों में रखे और इस आज्ञाकारी बालक को बनाए। कैसे एक मनुष्य पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रकार की बात कर सकेगा, या एक महिला पवित्र आत्मा के साथ ऐसी बात कर सकेगी? नहीं, वो पवित्र है, और यदि उसका जीवन आप में है तो आप भी वैसे ही हैं, आप उसी के समान होंगे। इज़राइल जैसा कि हमने सोचा, क्योंकि वे दूसरों के साथ मिलने से उन्नति कर रहे थे, इस परमेश्वर की हाथ ही ये। अब आप जानते हैं, आज हम यही सोचते हैं। अभी कुछ दिनों पहले, अधिक समय नहीं हुआ, मैं कुछ लोगों से होटल में बातें कर रहा था, धार्मिक क्षेत्रों में महान व्यक्ति, और उन्होंने मुझसे कहा, परमेश्वर सिद्ध करता है कि वो हमारे साथ है। क्यों? भाई ब्रैनम, हम पिछले वर्षों से बढ़ गए हैं, मैं भूल गया कितने, सैकड़ों ऐसे ही। मैंने कहा, ये तो जरा सी भी स्वीकृति नहीं है। ये ठीक बात है, पिछले वर्ष से वैश्यवृत्ति लगभग 30% बढ़ गई है। क्या ये दर्शाता है कि परमेश्वर वैश्यवृत्ति के साथ था? ये तर्क अच्छा नहीं है। नहीं, आप ये नहीं कर सकते। नहीं श्रीमान, परमेश्वर अपने वचन के पक्ष में होता है। कोई भी व्यक्ति अपने वचन के साथ खड़ा होगा यदि वो ईमानदार है। ठीक है, उन्होंने सोचा क्योंकि वे एक संधि में थे। अब यहाँ हम एक क्षण के लिए सरकारी मामलों को लेंगे। हमारे राष्ट्र ने परमेश्वर के वचन को अस्वीकार कर दिया है, जैसा कि इज़राइल ने किया। उन्होंने परमेश्वर के वचन को अस्वीकार कर दिया, और उनके लोग, उनके याजक और भविष्यवक्ताओं ने और आदि आदि उनके पक्ष में भविष्यवाणी कर रहे हैं, और वे हम क्या कर सकते हैं सिवाय गलत भविष्यवाणी के, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन से विरुद्ध है। इससे हमारे महान प्रिय राष्ट्र पर दंड आ गया हुई। ये हमारे पूर्वजों के अनुभव पर आधारित है। वे फिर जो उनके पास था वही वापस चले। निश्चय ही इसराइल एक महान राष्ट्र था। उनके पूर्वजों की ओर देखें, परंतु परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। नहीं, वो बूढ़ा गंजा भविष्यवक्ता उनको वचन दे रहा है, और ये ठीक वैसे ही घटित हुआ जैसा उसने कहा। अपने इतिहास को पढ़ो और ढूंढो कि यदि ये सही है कि नहीं। ये ठीक वैसे ही घटित हुआ जैसा उसने कहा, और उसने उन्हें दोषी ठहराया, यद्यपि वे वहाँ खड़े थे। वे पवित्र याजक पवित्र पोशाकों के साथ इसे छिड़क रहे थे, और इधर या उधर अपने हाथ नहीं हिलाएंगे, क्योंकि इधर कुछ था, यानी रीति रिवाज या कुछ। यीशु ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम उसके कामों को करोगे, और उन्होंने उसे लिया और उसे दोषी ठहराया, उसे पेड़ पर लटकाया और उसे मार डाला। ये बिल्कुल ठीक बात है। परमेश्वर ने उसे फिर जिला खड़ा किया। जी हाँ श्रीमान, नहीं, वे नहीं करेंगे। हम आज आमोस का विश्वास नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। और आज हमने संधि की है, और हमारे पास आज हम उसे क्या कहते हैं? हम सोचते हैं ये परमेश्वर की ओर से हाँ है, क्योंकि हमारी संस्थाएं बढ़ रही हैं और हर चीज अपने में सही चल रही है। हम सोचते हैं इस पर परमेश्वर की सहमति है। आप जानते हैं, वे मिल गए। मैं विश्वास करता हूँ लगभग 20 या 30 लाख प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, कई लाख बढ़ गए हैं, समझे? वे सोचते हैं ये परमेश्वर की स्वीकृति है। वे कैथोलिक होने के नाते प्रोटेस्टेंट सोचते हैं ये परमेश्वर की स्वीकृति है, उनके प्रोटेस्टेंट होने के कारण। ये निरर्थक है, ये तोप की बर्बादी, ये परमाणु की राख हुई है, ये परमेश्वर का क्रोध फूटने पर है। ये बिल्कुल ठीक बात है। आप मेरी सुने, मैं आपको प्रभु का वचन बताऊंगा। आमीन। हमारी ओर देखें, संसार को देखें, अपने राष्ट्र को देखें। हम संयुक्त राष्ट्र के साथ सम्मिलित हो गए हैं। उसमें क्या है? अभक्ति लोगों का झुंड, और हम अपने ढिटाई के साथ अपने सत्र को आरंभ करने से पहले प्रार्थना भी नहीं करते। क्या हमने अभी यहाँ नहीं पढ़ा, जब तक दो जन सहमत ना हो एक साथ कैसे चल सकते हैं? परमेश्वर जब तक अपने दास भविष्यवक्ताओं पर प्रकट ना कर दे, वो कुछ नहीं करता। कैसे दो एक साथ चल सकते हैं जब तक वे सहमत ना हो? जब हमारे पास मुसलमान, बुद्ध, नास्तिक, अभक्ति वाले, स्वार्थी और उसमें सब कुछ है। आप सोचते हैं कि परमेश्वर इस प्रकार की बातों में रह सकता है? अच्छा, आप कहते हैं कि भाई हम उनके साथ मेल मिलाप में हैं, हमारे पास सारी पश्चिमी सुरक्षा है, उनके पास उनके चारों ओर सारे राष्ट्र सुरक्षा के लिए हैं। परंतु उस भविष्यवक्ता ने कहा, परमेश्वर तुम्हें नष्ट कर देगा। वही परमेश्वर जिसकी तुम सेवा करते हो, तुम्हारी मूर्खता के कारण तुम्हें नष्ट कर देगा। आज की प्रातः भी वो वही बात कहेगा। वो व्हाइट हाउस से चिल्लाना आरम्भ करके निर्धन के खेतों तक जाएगा। निश्चय ही वो करेगा। वो उन पर परमेश्वर के वचन में होकर चिल्लाएगा। निश्चय ही वो करेगा। सच्चे भविष्यवक्ता का यही मार्ग है। हमारी ओर देखें, कलीसियाओं की ओर। ओ, हम महान पवित्र रोमन कैथोलिक कलीसिया हैं। बाइबल में इसे वेश्या कहा गया है।
हम पूर्वजों के पूर्वज हैं। प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं एक साथ मिल गई हैं और इसे कहा कलीसियाओं का विश्व संघ कहा। वेश्याओं की व्यभिचारिणी बाइबल ने कहा, बिल्कुल ठीक यही कहा गया है। और तो भी हम सोचते हैं और अब सारी कलीसियाएं एक साथ होने जा रही हैं। श्री कॉलिंस मेरे मित्र भाई कैलिफोर्निया एरिजोना में हैं। आप एलमेर, मैंने कहा मेरा अनुमान है कि आप किसी अच्छी छोटी मेथोडिस्ट कलीसिया में जा रहे हैं। कहा जब इन्होंने स्वयं को कलीसियाई संघ में मिला लिया मैं इससे बाहर आ गया। मैंने कहा परमेश्वर आपको आशीष दे, आप भाई राज्य के समीप हैं। जी हाँ श्रीमान, सिद्धांत मनुष्य के साथ संस्था पर निर्भर करते हैं और उनके मनुष्य द्वारा बनाई गई शिक्षा पर और परमेश्वर के वचन को छोड़ रहे हैं। आज हमें किसकी आवश्यकता है? भविष्यवक्ता की। वहाँ वचन का धमाका करें, ठीक यही। हाँ, वे स्वयं अपने में सुरक्षा पाते हैं। ओ, हम सम्मिलित हो गए हैं, हम पेंटिकॉस्टल, निश्चय ही हमने विश्व कलीसिया संघ में सम्मिलित हो गए हैं क्योंकि वहाँ हमारी संगति है। हम उन्हें जीत लेंगे। जैसे कि एक स्त्री अपने पति के साथ शराब खाने में शराब पीने जाती है कि उसे परमेश्वर के लिए जीत ले, बहुत जैसे पति अपनी पत्नी के साथ शराब खाने में शराब पीने जाते हैं कि उसे परमेश्वर के लिए जीत ले। निरर्थक, शैतान की सीमा से अलग रहो। जब कोई भी चीज वचन का इनकार करती है मैं उसके विरोध में हूँ और इससे मैं हर संस्था के विरोध में हो जाता हूँ क्योंकि ये वचन के विरोध में है। हर विश्वासी को ऐसा ही अनुभव होना चाहिए। अच्छा, वे कहते हैं परंतु स्मरण रखें, हमारे पास, मैं कहता हूँ मेरे पास एक अखबार का टुकड़ा है, किसी ने मुझे एरिजोना से भेजा है कि कैसे अमुक पूर्वज ने उस दिन कहा पोप जॉन 22 या वे जो भी उसे कहते हो एक भला मनुष्य है। यही एक मनुष्य है जिसने कलीसियाओं को जोड़ने की बात कही है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों को एक साथ। कहा ये संभव है कि हमारे दिनों में ना आए परंतु अगले 15 या 20 वर्षों में ये यहाँ होगा। मैंने सोचा लड़के तू एक कुलपति होने के नाते तू इसकी भविष्यवाणी कर रहा है और इसे नहीं जानता। ये हमारे सोचने के पहले वो व्यक्ति जिसने मुझे लिखा उसने कागज के ऊपर लिखा है इसके पहले कि हम सोचे, वो टेपों को भी सुनता है। जी हाँ श्रीमान, उसने कहा ये हमारे सोचने से पहले। कहा भाई बनम क्या आपने ये वर्षों पहले नहीं कहा था? मैंने कहा निश्चय ही। हाँ श्रीमान, ये घटित होने जा रहा है क्योंकि ये प्रभु का वचन है, निश्चय ही इसे होना ही है। हाँ, वे कहते हैं अच्छा ये पवित्र कुलपति क्या आप नहीं सोचते कि इसे इससे कुछ अधिक जानना चाहिए? नहीं श्रीमान, यदि वो परमेश्वर के वचन का इनकार करता है और इसमें इस प्रकार देखता है वो नहीं कर सकता। मैं चिंता नहीं करता कि आपके मत में कितने पोप भविष्यवक्ता और जो कोई भी हैं। यदि आप वचन से हटे हुए हैं तो आप वचन से हटे हुए हैं, ये ठीक बात है। कैसे परमेश्वर ऐसी चीज को आशीषित कर सकता है जब तक वे परमेश्वर के ही वचन का इनकार करते हैं? वो कैसे अपने वचन को छोड़ आशीषित कर सकता है? कुछ जो उसके वचन के विरोध में है वो कैसे इसका इनकार कर सकता है? आप उस कैंसर को जो आपको खा रहा है आशीषित कर सकते हैं? आप कैसे उस बिजली के तार को आशीषित कर सकते हैं जिसे आप पकड़े हुए हैं? आप कहते हैं ओ मुझे पकड़े रहे और मुझे जला दे, ये पागलपन होगा। कैसे परमेश्वर उसे आशीषित कर सकता है जो उसके वचन के विरुद्ध है? इसलिए वचन पर वापस आए। आप प्रचारकों का झुंड जैसे कि हाउंड कुत्ते, तुम्हारे साथ क्या मामला है? तुम बाहर जाकर और अपना जन्मसिद्ध अधिकार दावत और कैडिलिक कार की सवारी के लिए बेच देते हैं या कुछ बड़ा ऊंची इमारत कहीं और बड़ा लाखों डॉलर का आराधनालय और वो सारी चीजें इस प्रकार की और अपना जन्मसिद्ध अधिकार बेच देते हैं और अपनी भक्त मंडली में परमेश्वर का वचन प्रचार करने में लज्जा और भय का अनुभव करते हैं। कहते हैं क्या तुम्हें अपने पर लज्जा नहीं आती और स्वयं को एक सेवक एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता कहते हो? संसार के गंध के लिए अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बेच रहे हैं। आप क्या उत्पन्न करेंगे? वही जो एसाव ने किया। ओ क्या ही कलंक है। ओ नहीं, एक पवित्र परमेश्वर जो अपने वचन को प्रमाणित करने के लिए उस पर ध्यान रखता है वो किसी ऐसी चीज को आशीषित नहीं करता जो उसके वचन के विरोध में हो। कैसे? अब सुनिए, मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ी देर से चल रहा हूँ, संभव है मैं आपका गला बंद कर दूँ कि मर जाए, परंतु देखिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कैसे एक पवित्र परमेश्वर जिसने अपना वचन बोला और कहा अब पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे परंतु ये नहीं टलेगा, इसका एक वचन भी नहीं, अब वो कैसे कुछ ले सकता है जो उसके विरोध में हो और उसे आशीष दे? ये कैसे कर सकता है? देखिए, वो स्वयं सिद्ध करता है, वो अपना वचन प्रमाणित करता है जो सही है वही कहता है, न कि सदस्यता के द्वारा। मोआब की ओर देखिए, मोआब के पास भी अपना वचन था। मोआब,
इसराइल के पास उसका वचन था और मोआब ने अपने वचन से भक्ति का भेष भर रखा था। उन्होंने 7 बलिदान चढ़ाए, शुद्ध 7 वेदियां पर बैल, सिद्ध अंक, सिद्ध बलिदान। तब उसको छोड़ उसने 7 मेढ़े लिए। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने मनुष्य के पुत्र के आने का विश्वास किया है और उन्हें अपने महाबिशप के साथ बलिदान किया। सारे उनके मान्य व्यक्ति, उनके सारे महायाजक और याजक, हर चीज अपने राजा के चारों ओर खड़े हुए और अध्यक्ष और जो भी, और इसे चढ़ाया उतनी धार्मिकता से जितना वे इज़राइल के विरोध में कर सकते थे। और वहाँ इज़राइल था, घुमक्कड़ लोगों का एक छोटा सा झुंड दिखाई पड़ता है। परंतु इज़राइल के साथ क्या था? परमेश्वर उनके अभियान में था, वो स्वयं को सिद्ध कर रहा था कि वो उनके साथ था। समझे? कोई मतलब नहीं कि उनके पास कितने कुलपति थे, पोप या जो कुछ भी। परमेश्वर तब तक उनके साथ नहीं हो सकता जब तक वो सिद्ध ना कर दे कि वो उनके साथ है, और जब तक वे उसके वचन से हटे हुए हैं और उसके वचन का इनकार कर रहे हैं, वो कैसे उनके साथ हो सकता है? उनके मध्य में जीवित परमेश्वर का कोई चिन्ह नहीं है। परमेश्वर कैसे संयुक्त राज्य के मध्य में हो सकता है जबकि दो जब तक सहमत ना हो एक साथ नहीं चल सकते? अब यहाँ देखिए, वहाँ मसीह की कलीसियाएं हैं जो कि कहलाती हैं, पेंतिकोस्तल के साथ सम्मिलित हो गई। पेंतिकोस्तल कहते हैं वे अन्य भाषा बोलने में विश्वास करते हैं, वे पवित्र आत्मा के प्रमाण में विश्वास करते हैं, भाषाओं में बोलना। वे कहते हैं कि वे इसमें, उसमें और दूसरे में विश्वास करते हैं, वे चिन्हों और आश्चर्य कर्मों में विश्वास करते हैं। चर्च ऑफ क्राइस्ट उन पर हंसता है और कहा, तुम अज्ञानियों का झुंड, ये तो बीते दिनों में था। कैसे दो एक साथ चल सकते हैं जब तक वो सहमत ना हैं? और वे एक साथ मिल गए। वे क्या कर रहे हैं? वे एक दूसरे से अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। इन सब चीजों से अलग मेरा बचाव मसीह में है और उसके वचन में, क्योंकि उसका वचन वो स्वयं है। ये ठीक बात है। जीवित परमेश्वर का कोई चिन्ह नहीं है, बिल्कुल नहीं। यीशु ने यही कहा, यदि तुम वचन को प्रकट नहीं करते तो फिर इसका विश्वास नहीं करते। यदि परमेश्वर केवल मेरे द्वारा नहीं बोलता और भविष्यवाणी नहीं करता मुझसे होकर, और कहते हैं कि मुझसे होकर और मुझ में होकर करता है वही जो मसीह को करना चाहिए, तो मेरा विश्वास मत करो। तब एक व्यक्ति कहता है कि ये भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की ओर से भेजा गया है और वचन का इनकार करता है। परमेश्वर ऐसी चीज पर दयावान हो, कैसे परमेश्वर ऐसा कर सकता है? अब मैं ये पूछूं, मैं नहीं जानता कि मैं फिर आपसे कब बात करूंगा। ये परमेश्वर पर निर्भर होगा। मैं तो केवल भोजन भीतर रख रहा हूं, जैसा कि उसने मुझे उस समय दर्शन में बताया, इसे पीपों में रख रहा हूं। तुम मुझसे पूछोगे, आमोस पहले कैसे देख सकता था उनका क्या होने जा रहा था? क्यों, ये अच्छा दिखाई पड़ा? देखिए, अब इधर देखिए, अब जरा ध्यान से सुने, क्योंकि ये सब टेप पर है और ये जाता है, ये समस्त संसार में जाएगा। समझे? अब कैसे, इधर देखिए, वहाँ इज़राइल था, उनके धर्म विद्यालय पहले से अच्छी दशा में थे, वहाँ उन्हें कोई परेशान नहीं कर रहा था, उनके पास उनका अपना धर्म था। वे किसी ने नहीं कहा आप यहोवा की आराधना नहीं कर सकते, आगे बढ़िए। मूर्ति पूजक राष्ट्रों ने कहा, आराधना हमारा एक दूसरे से समझौता है। उस भविष्यद्वक्ता ने उसमें से होते हुए देखा। समझे? इसी प्रकार से एक भविष्यद्वक्ता उसमें होते हुए आज देखता है। देखा? आगे बढ़े और इज़राइल ने कहा, ठीक है, हम खाएं पिएं और आनंद करें। इसलिए उनके झुंड एक साथ हैं और उन्हें कुछ मतसार बना दिए हैं और संस्थाएं, नामधारी और चीजें, और ये सब तय कर दिया है। और उनकी स्त्रियां विलास में जीती हैं और पाप करती हैं, लड़के नंगे नाच करवाते हैं और हर चीज, आधी पोशाकें, छोटा रेशमी सा दिखने वाला स्कर्ट। यदि आपने उनका कभी देखा हो, उन दिनों का उनका इतिहास, वे कैसे दिखाई पड़े? लगभग एक तिहाई वैसे ही बुरे जैसा आज वे करते हैं, यदि भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वे छोड़ नहीं सकते। हाँ, और उन्होंने कैसे किया और इस प्रकार चलते रहे, और राजाओं और याजकों और हर कोई। यीशु ने कहा, तुम विधवाओं के घर खा जाते हो, तुम ढोंगियों, और ये सारी बातें वे कर रहे थे। भविष्यद्वक्ता ने वहाँ खड़े हुए नीचे उनको देख रहा था, वो राष्ट्र इस प्रकार का, कोई आश्चर्य नहीं, उसका हृदय उसके अंदर टूट गया था। जी हाँ श्रीमान। अब आप कहते हैं, उसे कैसे मालूम पड़ा कि क्या होने जा रहा है? वो कैसे इसे पहले से देख सकता था? कैसे? ये सब अच्छा दिखाई दिया। क्यों? उनके पास खाने को बहुत है, उनके पास पहनने को बहुत है, उनके पास बड़े बड़े आराधनालय हैं, वे उन्नति कर रहे हैं, हर जगह पैसा लगा रखा है, सुख विलास, सड़कों पर नाच, अनैतिकता और सब चीजें चल रही हैं, और हर चीज बढ़िया चल रही है, जैसे कि आज अमेरिका है,
टेलीविजन गंदे हादसों से भरे पड़े हैं, अधनंगी औरतें, हर चीज जो आप देखते हैं केवल गंदगी और पाप है। आपको टेलीविजन की ओर नहीं देखना है, केवल अपनी आंखें खोलें, कहीं भी देखें।
Girls, boys, men, women smoking, drinking them Jezebels, calling themselves Christians. Filthy devils.
लड़कियां, लड़के, पुरुष, औरतें धूम्रपान कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वे इजाबेलें स्वयं को मसीह कह रही हैं, गंदे शैतान, स्वयं को मेथोडिस्ट कह रहे हैं, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, कैथोलिक और पेंटिकोस्टल। कोई आश्चर्य नहीं, इससे उसकी आंखें चुंधिया गईं जब उसने देखा। ये ठीक बात है, सब अच्छा दिखाई पड़ता है। आप कैसे इसे बचा सकते हैं यदि हम करने जा रहे हैं? कैसे इसे देखें? ओ, हमारे पास लाखों और हैं, हमारे पास हमारे भवन हैं, हमारे आराधनालय बहुत बड़े हैं, हमें नए आराधनालय बनाने हैं। अरे, हमारे पास बहुत पैसा है, हम नहीं जानते कि इसका क्या करें। क्यों हम बस अच्छे अच्छे स्थान बनाएं? इस राष्ट्र में बड़े बड़े आराधनालय वहाँ हैं, वो हमारे हैं, और अब भी हमारे पास बहुत पैसा है। क्या आप नहीं सोचते परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है? नहीं, आप उसके वचन से हटे हुए हैं। और भाई बरनम, आपका अर्थ है कि परमेश्वर इसे नष्ट करने जा रहा है? जी हाँ, उनमें से प्रत्येक को। आप कैसे जानते हैं? आमोस, तुमने कैसे जाना? जैसे कि डॉक्टर मामले का रोग निदान करता है, जब वो मरीज की बीमारी पा लेता है, वो जानता है कि क्या करना है, वो जानता है कि रोगी को क्या हुआ, वो जानता है कि ये कितना बढ़ गया है, और वो जानता है कि क्या घटित होने जा रहा है। और सच्चे भविष्यद्वक्ता के साथ यही है। एक सच्चा भविष्यद्वक्ता जब वो देखता है, मैं चिंता नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं, जब वो पाप को बढ़ते देखता है, ये खाने वाला कैंसर है, और ये पेंटिकॉस्टलों में ऐसा बढ़ गया है, और उनमें से सारे बचे हुए ये वापस नहीं आ सकता, ये बढ़ी हुई अवस्था में है, वे नष्ट होने जा रहे हैं। इसी प्रकार से आमोस मामले का रोग निदान करता है, वो इसका रोग निदान परमेश्वर के वचन से करता है। इसी प्रकार से कैसे आप एक सच्चे भविष्यद्वक्ता के मामले का रोग निदान करते हैं और उन स्त्रियों से कहते हैं कटे बालों के साथ न्याय में जाने का यत्न ना करें, जब आप भली प्रकार से जानते हैं? तुम बाकी पुरुषों से कहता हूँ और तुम प्रचार को जो वचन का इनकार कर रहे हो और भक्ति का भेष भरते हो, मामले को चकमा देने के लिए संस्थाओं के सदस्य बनते हो, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम उसी वचन को देखते हो जिसे सच्चा भविष्यद्वक्ता देखेगा। मामले के रोग निदान ने कहा मृत्यु, अलग होना। जैसे कि डॉक्टर, वो मामले को जानता है, वो जानता है कि किस प्रकार के लक्षण इसमें हैं। इस राष्ट्र को देखिए, जब आप कहते हैं पेंटिकॉस्टल ने कर दिया, जब वे आपको रखेंगे, आपको कलीसिया में भी नहीं आने देंगे, क्योंकि आप महिलाओं के विषय में प्रचार करते हैं, उनके बाल कटाने के विषय में, और बाइबल इसको दोषी ठहराती है। डरते हैं कि आप इस विषय में कुछ कहेंगे। यहाँ उस दिन जब मैं कुछ अभियानों की तैयारी कर रहा था, रॉय बॉर्डर्स थे पश्चिमी किनारे पर, वे उसे लाए एक साथ सेवकों का झुंड, लगभग मेरे अनुमान में उनमें 40 या 50, जहाँ की मेरी एक बड़ी सभा थी। उन्होंने कहा, भाई बॉर्डर्स, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहा, क्या ये सत्य है कि भाई ब्रैनम बपतिस्मा देने में प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रयोग करते हैं? श्री बॉर्डर्स एक बहुत ही मान्यवर सज्जन पुरुष, जैसे कि आप जानते हैं भाई बॉर्डर्स यहाँ से हैं। उसने कहा, श्रीमानो, उसने कहा, भाई ब्रैनम जब वे बाहरी बेदारी में होते हैं, बाहर यहाँ कहा, वो प्रचार नहीं करते, वे केवल आगे बढ़कर बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, यही है जो वे करते हैं। कहा, ये वो नहीं है जो मैंने आपसे पूछा। प्रेस्बिटर ने कहा, क्या वो? अब उनके पास टेप थे, वे जानते हैं। कहा, क्या वो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देते हैं? उसने कहा, हाँ, अपनी कलीसिया में, केवल उसी स्थान में बपतिस्मा देते हैं, अपनी ही कलीसिया में। उसने कहा, यही है बस जो मैं जानना चाहता था। हम उसे नहीं चाहते, हम अपने लोगों में ये अपधर्म नहीं चाहते। और उस दिन जब मेरे प्रिय मित्र एड डॉल्टन को बैप्टिस्ट कलीसिया से वो पत्र मिला, उसमें कहा, हम आपको बैप्टिस्ट संगति से बाहर निकालते हैं, क्योंकि तुम अब धर्म में मिल गए हो, यीशु के नाम में बपतिस्मा ले लिया है। मैं पौलुस के संग खड़ा होना चाहूँगा, जिसे संसार अपधर्म कहता है, मैं उसी रीति पर परमेश्वर की आराधना करता हूँ, क्योंकि ये उसका वचन है। जी हाँ श्रीमान, हाँ। ओह, निश्चय ही डॉक्टर ने मामले का रोग निदान कर लिया है, वो देखता है कि ये कहाँ है। एक सच्चा भविष्यद्वक्ता मामले का रोग निदान वचन से करता है। वो क्या? एक डॉक्टर अपने मामले का रोग निदान लक्षण से करता है, क्या ये ठीक है? वो लक्षणों की ओर देखता है, वो देखता है कि रोगी के साथ क्या मामला है, वो देखता है कि यहाँ कहाँ तक बढ़ गया है, और कहता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। और एक सच्चा भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का वचन लेता है और मामले का रोग निदान करता है और उसमें दवा डालता है और लोग उसे वापस उसके मुंह पर फेंक देते हैं। क्या घटित होने जा रहा है? नष्ट, बस यही है। सुख विलास के चाहने वाले संसार प्रवृत्ति के लोग झुंड जो ढोंगी कहलाता है, परंतु सच्चे भविष्यद्वक्ता का यही मार्ग है। ओ प्रभु, वो रोग को देखता है, उसने देखा कि वे परमेश्वर के वचन से हटेंगे, उसने वचन देखा और वो परिणामों को जानता है कि क्या आ रहा था। उसने वो सुख विलास देखा जिसमें वे दे रहे थे, उसने उन स्त्रियों का ढंग देखा जो व्यवहार वे कर रही थी, उसने उन याजकों का ढंग जो वे कर रहे थे देखा कि कैसे वे परमेश्वर की सच्ची आराधना से अलग हो गए थे और इस प्रकार की बातें। वहाँ ये उसके पास था, उसके पास उत्तर था। उसने कहा, वो परमेश्वर जिसका तुम दावा करोगे कि तुम उसकी सेवा करोगे तुम्हें नष्ट कर देगा। क्यों? तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। और तो भी उन्होंने सोचा उनके पास है, क्या मैंने कभी ये नहीं पढ़ा? दूसरा पद, चौथा दूसरा अध्याय, चौथा पद, क्योंकि मैंने तुम्हें होने के लिए चुना है, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने तुम्हें चुना है, और फिर भी तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करने से इनकार करते हो। तुम सोचते हो वो छोटा गंजा भविष्यद्वक्ता वहाँ अपनी सफेद लटकती दाढ़ी के साथ खड़ा है और उसकी आंखें आग से जल रही हैं, उन याजकों के झुंड से बोल रहा है और आदि आदि, और कहा, ढोंगियों, जिस परमेश्वर को ऐसा दिखा रहे हो कि जैसे उसकी सेवा कर रहे हो, वही परमेश्वर तुम्हें नष्ट कर देगा। तुम सोचते हो कि उसे सहयोग मिलेगा? ओ प्रभु, वो तो आज उसे परखो और देखो यदि वो करे नहीं। परंतु वो क्या है? सच्चे भविष्यद्वक्ता का यही मार्ग है। उसके पास वचन था, वो जानता था कि ये क्या था। जैसे कि पुराने नियम के मिकाया, वो छोटा बालक जिसे मैंने समर्पित किया, जैसे मैंने कुछ मिनटों पहले निकाला क्योंकि मैं समय के लिए जल्दी कर रहा हूँ, परंतु मिकाया जब वो आप के समक्ष खड़ा हुआ, उसने उनकी ओर देखा, वो वचन को जानता था। मिकाया ने उनसे वचन बोला। मिकाया ने अपने दर्शन को परख लिया, उसकी शिक्षा परमेश्वर के वचन के साथ है, और उसने देखा उसकी शिक्षा और वचन एक ही थे, क्योंकि वचन ने कहा कि वो आहाब को श्राप देगा और कुत्तों के द्वारा उसका लहू चाटा जाएगा। वचन ने यही कहा, इसलिए मिकाया के पास दर्शन था, यही कि वो भविष्यद्वक्ता था। देखिए मेरे पास क्या वचन आया, और उसने प्रार्थना की, ओ प्रभु परमेश्वर, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या कहना चाहिए इन प्रचारकों के झुंड से जो यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ सारी संस्थाएं हैं, राष्ट्र में सब मेरे विरोध में खड़े हैं। प्रभु, मैं यहाँ राजा के सामने खड़ा हूँ, मुझे क्या कहना चाहिए? वो दर्शन में चला गया, कहा, जाओ, बढ़ जाओ। कहा, परंतु मैंने इजराइल को भेड़ों के समान बिखरा हुआ देखा, जिसका कोई चरवाहा ना हो। वो जिला प्रेसबिटर बढ़कर आया और उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा कहाँ गया? ये मेरे पास से कब चला गया, मुझ में से? आप जानते हैं परमेश्वर ने क्या कहा? उसने शैतान को उनके मध्य में जाने दिया, क्योंकि वे आरंभ से ही वचन से हटे हुए थे। बाइबल ने कहा, यदि वे वचन का विश्वास नहीं करेंगे तो वो उन्हें जबरदस्त भ्रम में डाल देगा कि झूठ की प्रतीति करें और उसके द्वारा दोषी ठहरेंगे। बिल्कुल ठीक, ये संस्थाएं हैं और इस राष्ट्र के लोग आज कर रहे हैं, झूठ की प्रतीति कर रहे हैं ताकि उसके द्वारा दोषी ठहरें, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे कि आपका उद्धार हो। संस्थाओं वालों, सीधे हो जाओ, आदि आदि। हाँ, अब इन दूसरों ने क्या किया, इन दूसरे भविष्यद्वक्ताओं ने क्या देखा? वे भविष्यद्वक्ता थे, हाँ श्रीमान, वे भविष्यद्वक्ता थे, परंतु यदि उन्होंने रुककर अपनी भविष्यवाणी को वचन के साथ जांचा होता, यदि आज मेथोडिस्ट रुके होते और अपनी भविष्यवाणी को परखा होता, तो वे अगले व्यक्ति पर छिड़काव ना करते, वे पवित्र आत्मा पाते, वे प्रत्येक को यीशु मसीह के नाम से डुबकी का बपतिस्मा देते। यदि आज असेंबली ऑफ गॉड रुकी होती और अपनी भविष्यवाणी को जांचते, तो वे वचन पर वापस आ जाते। यदि वननेस वाले रुके होते और अपनी भविष्यवाणी को जांचा होता, तो वे वचन पर वापस आ गए होते। परंतु आप देखते हैं, यदि वे भविष्यवक्ता रुक गए होते और अपनी भविष्यवाणी को जांचते, उन्होंने तर्क किया, उन्होंने कहा, ये हमसे संबंधित है, इसलिए हम रमोत गिलाद जाएंगे और हम इसे ले लेंगे, क्योंकि ये हमसे संबंधित है, यहोशू ने ये हमें दिया है। मिकाया ने कहा, ये सुनने में सही प्रतीत होता है, परंतु यही वो है। आप तर्क नहीं करना चाहते, आप जो परमेश्वर ने कहा उसका विश्वास करना चाहते हैं, किसी चीज पर तर्क ना करें। क्या यदि अब्राहम ने तर्क किया होता, तो वो कैसे कभी अपना देश छोड़ता, तो वो 100 वर्ष का होकर कैसे अब भी परमेश्वर की महिमा करता, और वो कैसे सारा के द्वारा बालक प्राप्त करते, और वो 90 वर्ष की ही? तर्कों को निकाल दो, आप केवल विश्वास करें। आप शैतान आपसे ये कहने पाए, तुम जानते हो भाई ब्रैनम कुछ नहीं, केवल एक ढोंगी है, अब मैं, अब प्रतीक्षा करिए, मुझे देखने दें, यदि वो हम देखें, यदि वो सही शिक्षा दे रहा है, मुझे बाइबल में वापस जाने दो, ऐसा ना करें, वो आपको ये नहीं करने देगा, नहीं नहीं, समझे? परंतु वो मेरे विषय में कुछ बुरा कहेगा जो कि उसके पास अधिकतर हो सकता है, तब आप केवल सुनते रहें, रुकें और तर्क आरंभ करें, हाँ उसे ये नहीं करना चाहिए, उसे ये नहीं करना चाहिए, आपने मेरी ओर देखना आरंभ कर दिया, अच्छा आपके पास बहुत है और आप प्रभु यीशु की ओर देखते रहें, आप बहुत कुछ पा सकते हैं, उसकी ओर थोड़ी देर के लिए देखिए, मैं प्रत्येक सेवक को वहाँ रखने जा रहा हूँ। अब हम ये भूलने जा रहे हैं कि वो कभी पृथ्वी पर था, यहाँ एक लड़का है जिसने सिद्ध किया है, उसने समस्त राष्ट्रों में कि वो एक अवैध उत्पन्न संतान है, इसके पहले कि उसके माता पिता का विवाह होता वो अपनी माँ के गर्भ में था, ये सिद्ध कर दिया। अब वे वचन पर नहीं जा रहे हैं, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वे बस जो वो सुन रहे हैं उसे ले रहे हैं, समझे? एक अवैध संतान, क्या उन्होंने उसे नहीं कहा कि वो पापों में जन्मा है और उन्हें सिखाने का प्रयत्न कर रहा है? और देखिए कि वो क्या कर रहा है, वो वास्तव में हर कलीसिया को लताड़ रहा था जो उस राष्ट्र में थी। क्या ये ठीक था?
संस्थाएं, हर चीज, वो क्या था? कुछ थोड़ा सा अधिक परिपक्व लड़का जो आसपास घूम रहा था, युवा व्यक्ति, कोई नामधारी नहीं। मुझे बताएं, आप कौन सी कलीसिया से संबंधित हैं? आपका पिता कौन है? तुम कहते हो यूसुफ तुम्हारा पिता नहीं है, वो कहेगा यूसुफ मेरा पिता नहीं है। अरे तुम्हारा पिता कौन है? परमेश्वर मेरा पिता है। अच्छा तू पागल है, तू बिल्कुल यही है, तू मनुष्य होकर और कह रहा है कि परमेश्वर तेरा पिता है?
यदि उन्होंने इसे वचन के द्वारा परखा होता, हालेलुया, क्या आप नहीं देखते कि वचन को देहधारी होना था? उन्होंने अपने दर्शन को वचन से नहीं जांचा। यही है आज, यही मामला है, आप अपने दर्शनों को अपने भविष्यवाणी से नहीं जांचते और अपनी शिक्षाएं परमेश्वर के वचन के साथ। कोई आपको सत्य बताने का यत्न कर रहा है, आप उनके साथ गिर पड़ते हैं, जैसा कि आमोस ने किया, आप भी वही करेंगे। अब यहाँ देखिए, वो इस दशा में है, आप शायद आप उसे दोषी नहीं ठहराएंगे, ये ठीक बात है, यदि आप वचन पर वापस नहीं गए होते। वे वही करते हैं, उन्होंने आज उसे दोषी ठहराया। क्या हो यदि आप महिलाएं यहाँ पर, हाँ, आप अपने बाल कटाने के विचार को वचन से क्यों नहीं परखती और देखें कि ये क्या कहता है? आप क्यों नहीं वो कार्य करती? आप क्यों नहीं अपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को जांचते हैं? और वो गलत त्रिएकता, ये जो कहलाती है, जो कि संसार में कुछ नहीं है, केवल एक परमेश्वर के तीन कार्यस्थल, उपाधियाँ, पिता का कोई नाम नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जैसे कि नाम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम जो कि प्रभु यीशु मसीह है। अपने बपतिस्मे को बाइबल में जैसे सबने बपतिस्मा लिया उससे जांचें। यदि आप अपने विचारों को वचन से जांचेंगे तो आप वापस आ जाएंगे और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लेंगे। पौलुस ने उनसे यही करने को कहा और कहा, यदि कोई भी इससे कुछ भिन्न सिखाता है तो वो श्रापित हो, यहाँ तक कि कोई स्वर्गदूत भी उतर आए। आप जानते हैं बहुत सी बार स्वर्गदूत उतर कर आए। लड़के, पेंतिकोस्तल ने इसे कैसे खा लिया? उस विषय में क्या, जब संत मार्टिन वहाँ खड़ा था और यहाँ उसके सामने चमकदार खड़ा था एक मनुष्य जिसने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था, जो पवित्र आत्मा में विश्वास रखता था और वचन का पालन करता था, और रोमियो ने उसे बाहर निकाल दिया था और उसके साथ सब कुछ कर रहे थे, अपने रीति रिवाजों में लेने का यत्न कर रहे थे और मनुष्यों के द्वारा बनाई गई शिक्षाएं, वो व्यक्ति वचन पर खड़ा था और एक दिन वो अपनी सामर्थ्य में शैतान उसके पास आकर उससे बातें करने का यत्न करता है, वो उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देगा। एक दिन शैतान मसीह के समान आता है, ताज पहने हुए, सुनहरी चप्पलें पहने हुए, वहाँ खड़े होकर बोला, क्या तुम, उसके चारों ओर उजियाला चमक रहा था, मार्टिन तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, मुझे दंडवत करो। मार्टिन ने उसकी ओर देखा, वहाँ कुछ गड़बड़ी थी। उसने कहा, मार्टिन तुम मुझे नहीं पहचान सकते? कहा, मैं तुम्हारा प्रभु बचाने वाला हूँ। कहा, मेरी आराधना करो। और उसने ये तीन बार कहा और मार्टिन ने चारों ओर देखा, उसने देखा मसीह जब वो आएगा तब अपने लोगों के द्वारा ताज पहनेगा, वो सुनहरी चप्पलें नहीं पहनेगा। उसने कहा, शैतान तुम उससे दूर हो। लड़के, क्या पेंतिकोस्तल इसे नहीं खा लेंगे? लड़के, एक चमकदार दूत, वो महिला शिकागो से आई जहाँ मैं जा रहा हूँ। कहा, भाई बणम, सेवकगण वहाँ पर हैं। कहा, यदि प्रभु का स्वर्गदूत ने आपको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देने के लिए कहा है तो वे स्वीकार कर लेंगे, परंतु क्योंकि ये आपका अपना विचार है, समझे, यदि कोई स्वर्गदूत इस वचन के विरोध में कुछ कहता है तो वो प्रभु का दूत नहीं है। यदि कोई भी स्वर्गदूत इस वचन के विरोध में कुछ भी कहता है तो वो झूठा ठहरे। और यदि कोई मनुष्य आपको बताए, परमेश्वर की ओर से एक संदेशवाहक कहता है कि वो परमेश्वर की ओर से है और आपको बताता है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना ठीक है तो वो झूठा ठहरे। यदि कोई व्यक्ति आपको बताता है कि बाल कटाना ठीक है और इस प्रकार की बातें कि आपको आराधनालय के भीतर टोपी पहननी चाहिए, टोपी ढाकने के लिए है, वो झूठा ठहरे। परमेश्वर का वचन सच्चा। इनमें से कोई भी चीज जो वचन के विरोध में है वो झूठा ठहरे, ये वचन है जो सच्चा है, यही स्थिर रहेगा। यही कारण था कि मिकाया जान सकता था कि उसकी भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से आई है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के साथ थी। जी हाँ श्रीमान, उसका दर्शन वचन के द्वारा समर्थित था। ओ, यदि आमोस यहाँ था तो वो वचन के साथ स्थिर रहता, ये ठीक बात है। परंतु आप देखिए कि आज परेशानी ये है हमारे साथ जैसे कि उनके साथ थी। मैं बंद कर रहा हूँ। हमारे साथ वैसी ही परेशानी है जैसे कि उनके साथ थी। उन्हें नेव से हटाकर दिखाया गया था। यीशु ने कहा, तुमने अपने रिवाजों से परमेश्वर के वचन को प्रभाव रहित बना दिया, और वो झूठा बपतिस्मा, वो पवित्र आत्मा प्राप्त करने के झूठे चिन्ह, उनमें से कुछ कहते हैं हाथ मिलाइए, उनमें से कुछ ने कहा भाषाओं में बोलिए। मैंने शैतान को अन्य भाषा बोलते देखा है और हाथ मिलाते भी। जी हाँ श्रीमान, ये इसका कोई चिन्ह नहीं है। अब देखिए, ये सारी चीजें इसी प्रकार हैं, वे सारी चीजें, समझे? आप उन रिवाजों को सिखाने के लिए वचन से हट जाते हैं, ये ठीक बात है। अब उसे आपको वचन पर वापस ले जाना है। परंतु हमारे आज के शिक्षक लोगों को परमेश्वर के वचन की नेव से हटकर सिखाते हैं। अब ध्यान से सुने, यही जो वे वहाँ पर करेंगे। आमोस उन्हें यही बता रहा था, जिस परमेश्वर को तुम जानने का दावा करते हो वही तुम्हें नष्ट करने जा रहा है। हमने उन्हें हटकर सिखाया, किससे? विश्वास की नेव जो एक बार पेंतिकोस्तल पूर्वजों को दिया गया। जी हाँ, वो बाइबल, झूठी अग्नि शोधक सिखाया, झूठा बपतिस्मा सिखाया, हर चीज गलत 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 मूल से अलग कर रहे हैं। आप इसका विश्वास ना करें, वापस बाइबल पर आएं और अपनी शोधक अग्नि लें और अपना पिता पुत्र और पवित्र आत्मा लें और छिड़काव मारें और वो सब चीजें और वापस आएं और देखें यदि ये पवित्र वचन अनुसार है। यही विधि है, इसे नेव पर रख कर परखें। देखिए, आदि शिक्षा जो पौलुस ने सिखाई उससे हटकर है कि बाइबल बोलती है कि परमेश्वर की कलीसिया प्रेरितों की शिक्षा और भविष्यवक्ताओं पर खड़ी है। भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को एक ही होना चाहिए, निश्चय ही। क्या हम वचन की आदि शिक्षा से हटकर नामधारी शिक्षा पर चले गए हैं? अब बंद करते हुए सुनिए, आत्मिक आवाज को सुनने का यंत्र लगाएं। सुनिए, हम वचन की आदि शिक्षा से हट गए हैं और नामधारी की नेव पर आ गए हैं। मैं उस पर कब तक टिका रह सकता हूँ? अगले 3 घंटों तक। वचन की आदि शिक्षा से हटकर संसारिक सुख विलास की नेव पर संसारिकता कलीसिया में अनैतिकता घुस रही है। वचन से हटकर मतसार में, इसे आदि को मैं प्रचार करने में 3 सप्ताह लूंगा, वे 4 टिप्पणियां वहाँ पर। वचन से हटकर नामधारी में, नामधारी और वचन, जैसे ही कलीसिया नाम रखती है तभी वचन से हट जाती है। वहाँ कुछ नहीं, केवल एक बात है, वही वापस आए जहाँ से छोड़ा है और फिर आगे जाएं, वचन पर वापस आए, ये ठीक बात है। प्रायश्चित का अर्थ है कि वापस जाएं, अपना मुंह घुमा लें, आप गलत मार्ग पर जा रहे हैं। ठीक है, नामधारी विलासिता का, नामधारी एक नेव, मेरा अर्थ विलासिता का संसारिकता की आदि शिक्षा, मत्सार की नेव, और ये सब मिलकर अनैतिकता को जन्म देता है, भ्रष्टता, आत्मिक भ्रष्टता को। वो सच्चा नबी होने के कारण वो हम में भी वही देखेगा जो उनमें देखा। यदि वो आज से इस प्रचार मंच पर खड़ा होता और मैं कहूँगा, भाई आमोस, परमेश्वर के महान भविष्यद्वक्ता, आप निडर रहो, यहाँ आकर मेरा स्थान ले, वो इस वचन को प्रचार करता, उसे करना ही है, वो भविष्यद्वक्ता है, ठीक है, वो ठीक उसी प्रकार प्रचार करता जैसे लिखा है, ठीक वही जो अब हम कर रहे हैं, ठीक है, वो करता उनमें जो उसने हम में देखा, नैतिकता का पतन। मित्रों जरा देखें, यहाँ इस कलीसिया में कितने उपस्थित हैं। देखिए, संसार का नैतिकता का पतन, क्यों? हम ये जानते हैं कि ये है। भाई क्या मामला है? ये वचन सर हटकर है, ये ठीक बात है, ये ठीक है। आमोस ने कभी भी सरकार को दोष नहीं दिया, क्या यहाँ पर आपने उस पर ध्यान दिया? जब आप घर जाएं तो इसे पढ़ें। उसने कभी भी सरकार को दोष नहीं दिया, उसने कलीसिया को ऐसी सरकार चुनने के लिए दोषी ठहराया। तुम राजनीतिज्ञों, मैं आपसे ये खुलकर बता दूं, यहाँ और संसार के अंदर जहाँ ये जाएगा, कलीसिया ने यरोबाम जैसे को चुना, आश्चर्य नहीं यदि ये हमने भी वही बातें की हों। हम कहें कि यह अच्छी सरकार है। सरकार चट्टान पर घर नहीं बना सकती। जब लोगों ने रेत पर बने घर को चुना, क्या हो सकता है? मत कहिए हमारी सरकार। ये आप राष्ट्र हैं, ये लोग हैं। हम कैसे कर सकते हैं? एक सेवक ने मुझसे कहा, भाई ब्रैनम, कहा, देखिए, मैं जानता हूं कि आप उसमें सही हैं, परंतु कहा, यदि मैं उसे प्रचार करूंगा, मेरा नामधारी कलीसिया मुझे बाहर भगा देगी, मेरे लोग मुझे बाहर भगा देंगे। कहा, मैं दूसरा उपदेश प्रचार नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा, जैसे भी हो, इसे प्रचार करो। जी हाँ श्रीमान, ये परमेश्वर का वचन है, आप जिम्मेदार हैं। यदि आप परमेश्वर के सच्चे प्रचारक हैं, तो आप वचन के साथ स्थिर रहेंगे। यदि नहीं, तो आप अपने नामधारी के संग स्थिर रहेंगे। निर्भर करता है कि आप कहाँ से हैं। देखिए, नहीं श्रीमान, हम नहीं बना सकते। सरकार ठोस चट्टान पर घर नहीं बना सकती। जब लोग एक सुखद धंसने वाले रेत पर घर के लिए मत दे रहे हैं। देखिए, हम क्या चाहते हैं? अब हम एक मिनट लेंगे, या मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको थका नहीं रहा हूँ, परंतु हम जरा देखें कि हम क्या चाहते हैं। एक मिनट, मैं इस टिप्पणी को नहीं दे सकता। ये टिप्पणी, देखिए, हम क्या चाहते हैं? अपने टेलीविजन को देखिए, हम यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हंसाने वाला वहाँ खड़ा हो और सब प्रकार के गंदे चुटकुले सुनाए, और हम बुधवार रात्रि को घर पर ही रह जाते हैं। यह प्रचारक आपको जल्द छोड़ दे, ताकि आप जाकर देख सकें। कोई पुरानी गंदी घिनौनी, जिसने 5 या 6 बार विवाह किया हो, वेश्या, गंदे चुटकुले सुनाती है, कामुक वस्त्र धारण किए हुए और इस प्रकार की बातें करती है, और आप उसे परमेश्वर के भवन से अधिक प्रेम करते हैं, ये दर्शाता है कि आप में किस प्रकार की आत्मा है। हम इसकी अनुमति देते हैं। हम लोग, यदि इस राष्ट्र के लोग अपनी सरकार को चिट्ठी लिखें, समझे लाखों करोड़ों चिट्ठियां सरकार के पास पहुंचे कि इन गंदे प्रोग्रामों को बंद करो, इन्हें ये करना पड़ेगा। हम ही लोग हैं, परंतु हम लोग गंदगी को चाहते हैं, इसलिए हम पाते हैं। रेडियो प्रोग्रामों को देखिए, ओ प्रभु, रॉक ऑफ एजेस को मटकने में बदल दिया है। पुरानी कठोर क्रूस रॉक एंड रोल में, पुराने कठोर क्रूस, जी हाँ, निश्चय ही, हमारे रेडियो, टेलीविजन, सब। यहाँ अधिक समय नहीं हुआ कि वे चक्कर वाली, वे छोटी लड़कियाँ, हर चीज इतनी अनैतिक थी जितनी हो सकती है। हमें इसी से प्रेम है। ये किसके द्वारा करवाए जाते हैं? बियर, विस्की, सिगरेट, राष्ट्र का पैसा। वे क्या करते हैं? उनके टैक्स के पैसे को लेते हैं, जो कि सरकार के पास टैक्स में जाना चाहिए, और वे घिनौने गंदे टेलीविजन कार्यक्रमों के लिए भुगतान करते हैं। पेंटिकॉस्टल इन घिनौने गंदे सिनेमा शो के लिए नहीं जाया करते थे। जब वे ऐसे शो करते थे, शैतान ने आपके ऊपर एक रखा है और टेलीविजन आपके घर में रखा है। एक सच्चे भविष्यद्वक्ता का मार्ग बहुत कठिन है, परंतु हम सत्य के साथ स्थिर रहे। जी हाँ श्रीमान, हमारे विज्ञापन पटों को देखें। स्त्रियां अपने हाथों में सिगरेट लिए खड़ी हैं, प्रत्येक छोटी इजाबेल इस राष्ट्र में। क्यों मैं गया? उस दिन मैंने विचित्र चीज देखी। एक स्त्री थी, मैं विद्यालय बालकों को लेने के लिए गया हुआ था। जब मैंने उन्हें लेने के लिए वहाँ पहुँचा, उन्होंने आधी पैंटें ही नहीं पहनी हुई थी, और ये जमा देने वाला मौसम था। उनमें से प्रत्येक, जैसे ही वे वहाँ पहुँचते हैं और रुकते, यदि उनके पास सिगरेट न होती, वे उसे तुरंत जलाते हैं। और देखिए मैं कैसे हालात में था। अपने हाथों में सिगरेट लगाए दरवाजे से हाथ बाहर रखकर रखा है, और आप उनसे कुछ कहें, ओ, वे निश्चय ही भड़क उठेंगे। आप रिकी से कुछ कहें, या एल्विस से, या उनमें से किसी से, वे आपको मार डालेंगे और सरकार उनका पक्ष लेगी, क्योंकि वे केवल अल्प आयु युवा है। अच्छा, ये ठीक है, वे थे, वे नहीं समझे, वे अल्प आयु युवा है, इसे अनदेखा करें। अब आप देखते हैं सच्चे भविष्यद्वक्ता का क्या अर्थ है, उसका मार्ग। इन कलीसियाओं में गंदे स्वप्न देखने वालों को देखिए, जो अपने नामधारी के संग हैं, वे आपकी पीठ में गोली मार देंगे। केवल एक ही चीज उन्हें ऐसा करने से रोकती है, परमेश्वर का अनुग्रह, जब तक कि संदेश बाहर आ रहा है। शैतान आपको मार डालेगा यदि वो ऐसा कर सके, ये ठीक बात है, परंतु संदेश को जाना ही है। मैं प्रभु लौटा दूंगा, ये ठीक बात है, मैं इस योग्य होऊंगा कि ये पत्थर उत्पन्न कर देंगे, ये ठीक बात है। हमारे सिनेमा शो, हमारे विज्ञापन बोर्ड, हमारे विलास प्रेमी पापी स्वयं को मसीही कहते हैं, लोग जो स्वयं को मसीही कहते हैं, सुख के प्रेमी, कामुकता के खोजी, स्त्रियां अश्लील वस्त्र पहने हुए, पुरुष उनकी ओर देख रहा है, उनके ऊपर सीटी मार रहा है, स्वयं को मसीह कह रहे हैं, बाहर जाते हैं। क्यों? उनके पास भी है, उनके पास है। फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया में ये महान बात है कि अब उनके पास बड़े बड़े क्लब हैं, सारे पुरुष एकत्र होकर और अपनी अपनी चाबियां उसमें फेंकते हैं और स्त्रियां जाकर उनमें से एक चाबी ले लेती है और वो जो भी हो उसे अपनी पत्नी होने के लिए घर ले जाता है। वे एक सप्ताह तक रहते हैं और वापस आकर फिर अपनी अपनी चाबियां फेंकते हैं, समझे? ये क्लब है। अवैध बालक उत्पन्न होते हैं और सब कुछ, सुअर को सुअर खाता है, कुत्ते को कुत्ता खाता है, क्या मामला है ये? क्योंकि उन्होंने वचन छोड़ दिया है। वे नहीं जानते चालीनता का क्या अर्थ होता है। यहाँ कसी हुई पोशाकों के साथ और इस प्रकार की बातें, और मनुष्य उन पर मोहित हैं और सोचते हैं कि वे शालीन हैं। बहन, हो सकता है आपने कभी भी कुछ गलत नहीं किया, परंतु मैं आपको कुछ बता दूं, आप शैतान का हथियार हैं। और न्याय के कटघरे में यहोवा यूं कहता है कि आपको व्यभिचार के लिए उत्तर देना होगा और आपका प्राण चला जाएगा। आप भली प्रकार से जानते हैं और जो भी है आप अभी जानते हैं। हमारी सारी व्यवस्था भ्रष्ट और क्षीण हो गई है। ये हमारे लोग हैं जो वे चाहते हैं, जैसे घर के अच्छे व्यक्ति के समान। क्यों? यदि घर का स्वामी भला है, आपकी सरकार को दोषी ठहरा रहा है। यही है जो हमारे लड़कों को वहाँ भेजता है और उनमें से बेकार टूटी हुई तोप बनाता है। ये ठीक बात है, क्योंकि ये हमारा अपना भ्रष्टाचार है। यदि हमने प्रभु से प्रेम किया है और उस प्रभु की सेवा की है और सही प्रकार की सरकार को मत दिया है और सब कुछ, तो ये अद्भुत स्थान होगा। ये ठीक बात है, कोई युद्ध नहीं होगा। परमेश्वर हमारे छिपने का स्थान है और सामर्थ है। अपने लड़कों को बाहर भेजें और उन्हें मार डालें और उन्हें काट दें और सब कुछ, क्योंकि हमारे अपने व्यवहार ने इसे घटित कर दिया है। परमेश्वर ने बाइबल में ऐसा कहा है और वो बदलता नहीं, वो वैसा ही है। ये उनके अपने लोगों की चाह है। जैसा कि घर का भला स्वामी, क्या हो यदि वो अच्छा मनुष्य है, वो सही करना चाहता है और वो परमेश्वर के लिए जीना चाहता है और उसके पास सुख सुविधा है। अनैतिकता से प्रेम करने वाला परिवार, वो व्यक्ति क्या करने जा रहा है जबकि उसकी पत्नी छोटे वस्त्र पहनना चाहती है और कामुकता से भरे वस्त्रों को पहनना चाहती है और बाहर जाकर इजाबेल के समान व्यवहार करती है और उसकी पुत्रियां और उसके सारे बालक और वे सब। और उसका पिता कहता है अपने छोटे लड़के से, जिसे उसने पाला है और प्रेम किया है और संभाला है और चूमा है और पलंग में रखा है और उसके लिए प्रार्थना की है, खड़ा होकर कहता है, मेरे बूढ़े मनुष्य का पागलपन, वो केवल बाइबल के विषय में सोचता है। वो मनुष्य अपने परिवार के साथ क्या कर सकता है? यही बात हमारी सरकार अपने लोगों के साथ है। सरकार को दोष ना दें, इन पिछड़ी हुई कलीसियाओं को दोषी ठहराएं। अपनी राजनीतियों में ऐसी चीजों को रख रहे हैं जैसी उनके पास है। वे इसे चाहते हैं, यही कारण है कि वे उसे मत देते हैं और यही कारण है कि उनके पास है और यही कारण है कि परमेश्वर का न्याय उन पर है और वे इसे काटने जा रहे हैं। जो उन्होंने बोया वे अब बो रहे हैं और बाद में वे उसे काटेंगे। हम ध्यान दें और हम पागल हो गए हैं। ओ हाँ, अपने मार्ग को रूस में खरीदना चाहते हैं, अपने मार्गों को साम्यवाद के संग खरीदना चाहते हैं। क्यों? पैसा। आप परमेश्वर के इन वरदानों को नहीं खरीद सकते। एक व्यक्ति जो शमाउन था, एक दिन इसे करने का यत्न किया और पत्रस ने कहा, तू अपने पैसों के साथ नाश हो। हम शमाउन का व्यवहार कर रहे हैं, टोनेबाज, परमेश्वर के वरदान को खरीदने का यत्न कर रहे हैं। वचन पर वापस आओ, परमेश्वर के पास वापस आओ, मसीह के पास वापस आओ और फिर साम्यवाद की चिंता मत करो। हम सही व्यक्ति को मत देंगे। हमारे पास अब्राहम लिंकन के समान दूसरा व्यक्ति होगा, जॉर्ज वाशिंगटन या कोई जो वास्तविक पुरुष था। वहाँ सरकार को दोष न दें, हम दोषी हैं। यही आमोस कहेगा और यही कोई भी परमेश्वर का सच्चा भविष्यद्वक्ता कहेगा। यदि वो परमेश्वर का वचन जानता है, यदि वो सच्चा भविष्यद्वक्ता है, तो वो परमेश्वर का वचन जानता है क्योंकि ये उसके पास आता है। इसराइल अपने शत्रुओं के साथ समझौते में, पहले उन्हें अपने परमेश्वर के वचन से हटना होता था, इसके पहले कि वे अपने शत्रुओं के संग समझौता करें और इसके पहले कि हम अपने शत्रुओं से संधि करें और आदि आदि, हमें परमेश्वर के वचन से अलग होना होगा। अब वैसे ही रोम कब्जा करेगा। क्यों? हम ये सारे समय कर रहे हैं। उसने सरकार को लिया, वो स्थानों को ग्रहण कर रही है, वो लोगों को ले रही है, अब वो कलीसियाओं को ले रही है। हम क्या कर रहे हैं? चुपचाप बैठे हैं, उनके साथ सहमत हो रहे हैं। ओ, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, भले वो इस मार्ग से हो या उस मार्ग से हो, जो भी है ये सब परमेश्वर है। तुम कंगाल, दयनीय, पिछड़े हुए, भविष्यद्वक्ता कहलाने वाले, तुम्हारे साथ क्या मामला है? वे इन बातों में परमेश्वर के वचन के विषय में नहीं जानते। वे वचन का अध्ययन नहीं करते, वे अनुभव नहीं करते। वे कहते हैं साम्यवाद समस्त संसार को अपने अधिकार में ले लेगा। नहीं, ये ऐसा नहीं है। रोमवाद संसार को अपने अधिकार में लेने जा रहा है और ये वो मसीहत के नाम में कर रहा है। क्या बाइबिल ने नहीं कहा? यीशु ने कहा, ये इतना समीप है कि यदि हो सके तो ये चुनावों को भरमा दे। आज हमें किस बात की आवश्यकता है? ये कहते हुए मुझे बंद करने दें, अब मैं बंद करने जा रहा हूँ। आज हमें किस बात की आवश्यकता है? एक और सच्चे भविष्यद्वक्ता की। आमीन। परमेश्वर का वचन आने के लिए हमें एक मनुष्य की आवश्यकता है। हाँ भाई, वो तिरस्कृत किया हुआ होगा और भगाया हुआ, निकाला हुआ, परंतु वो निश्चय ही धमाका कर देगा। वो कर सकता है। वो निश्चय ही ऐसे बीज बोएगा जब तक कि चुने हुए पा ना ले। ये सच बात है। हमें भविष्यद्वक्ता की आवश्यकता है। हमें एक मनुष्य की आवश्यकता है जिसके पास वचन का सही अनुवाद आता हो, कि जिसके द्वारा परमेश्वर बोलता हो और सच्चे वचन को प्रमाणित करता हो। हमें यही है जिसकी आवश्यकता है। और भाई, मलाकी 4 के अनुसार हमें एक प्रतिज्ञा मिली है कि वापस फिर लाए। क्या? लोगों का विश्वास वापस बाइबल पर। हमसे एक प्रतिज्ञा है, वो ये करेगा। आमोस जान गया, आमोस इज़राइल को जान गया, उसके ईश्वर रहित प्रेमी जल्द ही उन्हें नष्ट कर देंगे। और आज उनके ईश्वर रहित प्रेमी जल्द ही उन्हें नष्ट कर देंगे। वही नामधारी का मत्सार और चीजें जिनमें उन्होंने स्वयं को बांध रखा है, आप पेंतिकोस्तल लोग, वही बातें तुम्हें नष्ट करने जा रही हैं। तुम्हारे मत्सार और नामधारी, आप स्वयं को बांध रहे हैं ताकि उस पशु की छाप को ले लें, और ये भी नहीं जानते कि उसने आपकी आंखों को बंद कर रखा है। निश्चय ही ये है एक निष्कासन। आप क्या करने का यत्न करने जा रहे हैं? आप इससे संबंधित हैं या संबंधित नहीं हैं? समझे? आप थोड़ी प्रतीक्षा करें, थोड़ा सा, थोड़ी और देर। तब आप कहते हैं कि मैं इससे तब बाहर निकल जाऊंगा। नहीं, आप नहीं निकलेंगे। आप पहले ही उसमें हैं। आप पर पहले ही छाप हो गई है। आपके छाप के साथ आप पकड़े जाएंगे। कोई मतलब नहीं, ऐसा फूट फूट कर रोया जब वो भली प्रकार से जानता था, परंतु वो फूट फूट कर रोया प्रायश्चित का स्थान पाने के लिए, और वो नहीं पा सका। आप वहीं स्थिर रहेंगे। अब समय है कि भाग जाएं। आमोस जान गया कि उनके ईश्वर रहित प्रेमी जल्द ही उसे नष्ट कर देंगे, क्योंकि वे कलीसिया ने उसे छोड़ दिया है। परमेश्वर को और उसके वचन को, जीवन का मार्ग, वे परमेश्वर के जीवन के मार्ग से हट गए और अपने अपने बना लिए। ओ, वचन उनके लिए ठोकर का पत्थर था, और आज भी वही बात है। परमेश्वर का वचन कहलाने वाले मसीह के लिए ठोकर का पत्थर है। उसे यीशु मसीह के नाम में, पानी में के बपतिस्मे के विषय में बताएं, उसे पवित्र परमेश्वर के विषय में बताएं, वो बनाएगा। अच्छा, वे कहते हैं भाई हमारे पास भी पवित्र आत्मा है, तो फिर तुम क्यों अब बाल कटाए हुए हो? तुम अब भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिए हुए हो? तुम अब भी इन बातों में क्यों विश्वास करते हो जिनमें तुम विश्वास करते हो और जिस प्रकार तुम विश्वास करते हो? आपके फल ये प्रकट करने जा रहे हैं। यीशु ने कहा उनके फलों से वे उन्हें पहचान लेंगे। देखिए, ये आपको प्रकट करने जा रहा है। आप ऐसी बात के विषय में बात कर रहे हैं जिसके विषय में आप नहीं जानते। जी हाँ श्रीमान। हाँ, यदि आमोस यहाँ पर होता, वो उनके रीतियों के विरोध में चिल्लाता। आप ये जानते हैं। अब बंद करने के पहले मैं एक पद पढ़ना चाहता हूँ, 8वां पद, 3रे अध्याय का, और हम उसे पढ़ें। सिंह गरजा, कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा? अब समापन करते हुए सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे खेद है कि मैंने आपको आधा घंटा अधिक रुकाए रखा, परंतु देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं शिकारी हूँ, मैं शिकार करता हूँ, मैं आनंदित हूँ कि परमेश्वर ने मुझे कुछ ऐसा दिया है। उस दिन जब बंदूक चल गई, मैं फिर ये देखने चला गया कि ये फिर चल सकती है। मैं नहीं चाहता था कि उससे मुझे डर लगे। यदि सड़क पर विनाश था तो मैं कार चलाना नहीं छोड़ता। यदि मैं कमरे में उस पार जाऊं और कालीन से ठोकर खाऊं और खिड़की से बाहर जा पड़ूं, तो मैं चलना नहीं छोड़ूंगा। समझे? नहीं नहीं, परमेश्वर ने मुझे स्वच्छ अभ्यास दिया है। वो शैतान था, वो परमेश्वर नहीं था। समझे? वो शैतान था। अब मैं इसका आत्मिक रूप में इसको लागू करना जानता हूँ। इस समय कमरे में हम 3 हैं जो जानते हैं कि ये क्या है, और ये आपके सिर के बाल खड़े कर देगा, परंतु मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा। केवल ये 3 लोग पुष्टिकरण के लिए हैं। अब ये ठीक है, ये सब इसके विषय में परमेश्वर जानता है। ये अग्रिम चेतावनी है और सब कुछ, और हम ये जानते हैं। ये थोड़ी सी मेरी गलती है, और मेरे पास कुछ था। एक समय के लिए मैं एक व्यक्ति को लूंगा जबकि मुझे नहीं लेना चाहिए था। मैं उसका कलेजा उसमें से हिला सकता था। समझे? बजाय ये करने के मुझे उसका भुगतान करना था। इसलिए हम ये ठीक है, ये मैं और अब ये क्षमा कर दिया गया है, और हम आगे बढ़ेंगे। समझे?
Yes, Amos, this 8th verse.
हाँ आमोस ये आठवां पद, यदि सिंह गर्जा कौन न डरेगा। मैंने अफ्रीका के जंगलों में शिकार खेला है, मैं उसी क्षेत्र में था जहाँ सिंह थे, वो पशुओं का राजा है। मैं रात्रि के समय जंगल में था और आवाजें सुनी हैं और लकड़बग्गों का हंसना चिल्लाना और विभिन्न जानवर, और तब उनमें से कुछ लकड़बग्गे करते हैं, जब वे चिल्लाते हैं तो आपका खून जमा देते हैं, और वहाँ चीते थे और कटीली झाड़ियाँ और हर चीज और झींगर और बंदर और बबून, हजारों हजार चीखें हर जगह चलते हैं, और आप सब प्रकार की चीजें सुनते हैं जो चल रही हैं, परंतु सिंह को दहाड़ने दें, झींगर भी शांत हो जाते हैं, ये मृत्यु का सन्नाटा है। वे शांत रहते हैं क्या? उनका राजा बोला आमीन। यदि एक सिंह गर्जा कौन न डरेगा, जब परमेश्वर बोलता है कौन भविष्यवाणी करने से रुकता है? जब परमेश्वर बोलता है भविष्यवक्ता चिल्लाता है। आप जानते हैं मेरा क्या अर्थ है? सच्चा भविष्यवक्ता चिल्लाता है। मित्रों वो बोला है, तो फिर उसके राज्य के सब लोग ध्यान दें कि उसने क्या कहा है। यदि सिंह पहचान सकता है वहाँ कुछ गड़बड़ है, जब वो गरजता है उसके राज्य के सब शांत हो जाते हैं, वे सुनते हैं, यहाँ तक कि छोटे कीट, हाँ वो सिंह के राज्य में है, लकड़बग्गे की लहू छेदने वाली आवाज, वो शांत हो जाती है। वो हाथी वहाँ पर है, वो सिंह को उठाकर उसे चारों ओर घुमा सकता है और सिंह को गरजने दे, वो शांत होकर खड़ा हो जाएगा। वो जंगली भैंसा जो खुंकार सकता है, धधकती आग सा दिखता है अपनी नाक की आवाज से, जब सिंह उस पर कूदता है उसे जरा भी क्षति नहीं पहुंचाएगा। गैंडा अपनी 7 टन की अभेद खाल और उसका बड़ा मुंह का सिंह सिंह को गरजने दे, वो अपने मार्ग में रुक जाता है। क्या बात है? उसका राजा बोला है, समझे? वो सुनना चाहता है कि क्या कहा जाने वाला है। और जब परमेश्वर बोलता है भविष्यद्वक्ता चिल्लाता है, और तब उसका राज्य ध्यान देता है कि वो क्या कह रहा है। परमेश्वर बोला तो उसके राज्य का प्रत्येक प्राणी सुने कि वो क्या कह रहा है। आइए प्रार्थना करें।
ओ लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा,
ओ यहूदा के गोत्र के सिंह, उठ और गरज। तू इन अंत के दिनों में गरज रहा है, आपकी आंखें चुंधिया गई हैं, आप नीचे देख रहे हैं, आप कहलाने वाले मसीहों और संसार के पाप को देख रहे हैं, आप इस राष्ट्र के पाप को देख रहे हैं जब ये आपके बहुमूल्य लहू से खरीदा गया, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से नामधारी आपके वचन पर आक्रमण हो रहे हैं, देखिए कि झूठे भविष्यद्वक्ता कैसे झूठ बोल रहे हैं, परमेश्वर के सत्य को नकार रहे हैं। गरज ओ यहूदा के सिंह, अपने भविष्यद्वक्ता को चिल्लाने दे। जब परमेश्वर बोलता है कौन भविष्यवाणी ना करेगा, ये परमेश्वर का वचन बाइबल में से आ रहा है और भविष्यद्वक्ता में से होकर निकल रहा है, वो कैसे शांत रह सकता है? यदि वो रहेगा वो टुकड़े टुकड़े करके उड़ा देगा। ओ परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता को गरजने दे, प्रभु अपने संदेश को गरज, और तेरे राज्य का प्रत्येक प्राणी ध्यान दे, वे रुक जाएं, स्त्रियां रुक कर अपने को जांचें, पुरुष रुक कर स्वयं को जांचें, होने पाए कि प्रत्येक प्रचारक जो इस टेप को सुने रुक कर स्वयं को जांचे, क्योंकि यहूदा के गोत्र का सिंह गर्जा है और सच्चा वचन भविष्यद्वक्ताओं के पास आ रहा है। बोल और चिल्ला, प्रायश्चित कर, और फिर इसके पहले की और देर हो जाए। परमेश्वर संदेश मैंने टेप कर दिया है, और आज प्रातः ये देखने वाली भक्त मंडली आपको समर्पित है। विश्वास करता हूँ कि आप इसे ग्रहण करेंगे और परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों को बुलाएं जो अधीनता में, जो कभी भी ये टेप सुने या इस आवाज के शब्द के अधीन, वे करेंगे वापस प्रायश्चित पर इसके पहले की बहुत देर हो जाए। और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ यदि आपने यहाँ आमोस को भेजा होता तो वो भी इसी बात को चिल्लाता, क्योंकि वो चिल्ला नहीं सकता था, परंतु यदि वो प्रभु का भविष्यद्वक्ता है वो वचन का लाने वाला है, वो वचन के द्वारा भेजा जाता वचन के साथ, और वो वचन है। अब प्रभु इसे होने दें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।